देखिए भाई आगे सबक अल मफ़ूलु माहू अल्लज़ी फ़ुइला लिमुसाहबतिही बि अन तकूना अल फ़ाइलु मुसाहिबन लहू फ़ी सुदूर अल फ़िअल अनहु अव अल मफ़ूलु बिही फ़ी वुकूअ अल फ़िअल अलैह فقوله معه مفعول ما لم يسم فاعله أسند إليه المفعول كما أسند إلى الجار والمجرور في المفعول به وفيه وله. گزشتہ سبق میں ہم مفعول له کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور میں نے آپ کو بتلایا کہ جمہور نحویوں کے نزدیک مفعول له اس کا فعل ہونا یعنی مصدر ہونا بھی ضروری ہے اور اس کا منصوب ہونا بھی ضروری ہے. ضربتہ تادیبن جمہور کے نزدیک یہ تادیبن مفعول لہو ہے, یہ مصدر بھی ہے اور منصوب بھی ہے. جبکہ صاحب کافیہ کے نزدیک مفعول لہو کا منصوب ہونا ضروری نہیں. تو صاحب کافیہ کے نزدیک ضربتہ تادیبن یہ بھی مفعول لہو ہے اور ضربتہ للتادیبی یہ بھی مفعول لہو ہے. چنانچہ اسی لیے انہوں نے مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے شرط بیان کی کہ مفعول لہو کے منصوب ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہاں لام مقدر ہونا چاہیے. معلوم ہوا لام لفظوں میں موجود ہو پھر بھی وہ مفعول لہو ہے. اور نیز صاحب کافیہ کی تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ مفعول لہو کا فعل ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ وہ کوئی عین بھی ہو سکتی ہے, کوئی ذات اور کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. کیا تعریف کی انہوں نے مفعول لہو کی؟ مفعول لہو وہ اس چیز کا نام ہے جس کی وجہ سے فعل مذکور کو کیا جائے. بھائی اب دیکھو جئت للسمنی, سمن میں نے بتایا گھی کو کہتے ہیں, جئت للسمنی میں گھی کی وجہ سے آیا ہوں, یعنی میں آپ کے پاس گھی کے لیے آیا ہوں, گھی لینے کے لیے. تو یہاں پر دیکھو ماقبل میں جو مجیئت کا فعل ذکر ہوا یہ سمن کی وجہ سے کیا گیا, تو صاحب کافیہ کی تعریف اس لسمن پر بھی صادق آ رہی ہے اور اس کو بھی مفعول لہو کہنا پڑے گا ان کی تعریف کے مطابق. معلوم ہوا صاحب کافیہ کے نزدیک مفعول لہو کا منصوب ہونا بھی ضروری نہیں اور اس کا فعل ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بھائی تو صاحب کافیہ کے نزدیک ضربتہ للتادیب یہ بھی کیا ہے؟ مفعول لہو ہے. اور اسی طرح جئت للسمنی یہ بھی کیا ہے؟ مفعول لہو ہے. بھائی اس کے بعد صاحب کافیہ نے مفعول لہو کے منصوب ہونے کی شرط ذکر فرمائی. میں نے آسان لفظوں میں آپ کو بتلایا تھا کہ مفعول لہو کے منصوب ہونے کی تین شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ وہ مصدر ہونا چاہیے, دوسری شرط یہ کہ وہ فعل معلل بہی کے فاعل کا فعل ہونا چاہیے, یعنی مفعول لہو اور اس کے ساتھ جو اس کا فعل مذکور ہے دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہونی چاہیے. جیسے ضربتہ تادیبن, میں نے اس کی پٹائی کی ادب سکھانے کے لیے, تو یہ ضرب اور تادیب دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہے. اور تیسری شرط یہ ذکر کی کہ دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے, یعنی جو مفعول لہو کا زمانہ ہے وہی زمانہ فعل کا بھی ہونا چاہیے. تو یہاں پر بھی دیکھیں ضربتہ تادیبن, ضرب اور تادیب کا زمانہ ایک ہے. تو جب یہ شرطیں پوری ہوں گی تو پھر لام کا حذف کرنا اور مفعول لہو پر نصب پڑنا جائز ہوگا. مثلا آپ کہتے ہیں ضربتہ للتادیبی, لام لے کر آئے, عربی زبان میں علت بتلانے کے لیے لام کو وضع کیا گیا ہے, تو یہ بھی صاحب کافیہ کے نزدیک مفعول لہو ہے, لیکن اس کے منصوب ہونے کی شرطیں وہ پوری ہوں گی تو پھر لام کو حذف کر کے اس پر نصب پڑ سکتے ہیں. تو یہاں تینوں شرطیں پوری ہیں. لتادیب یہ مصدر بھی ہے اور نیز تادیب اور ماقبل میں جو ضرب کا فعل ہے دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہے, یعنی متکلم ہے, اور نیز دونوں کا زمانہ بھی ایک ہی ہے, کیونکہ یہاں تو ایک ہی فعل ہوا ہے, وہی فعل بائیں لحاظ کہ دوسرے کو اسے تکلیف ہو رہی ہے اس کو ضرب کہا گیا, اور یہی فعل بائیں لحاظ کہ اسے دوسرے کی اصلاح ہو رہی ہے اس کو تادیب کہا گیا. تو جب ایک ہی فعل ہے صرف اعتباری فرق ہے, ایک اعتبار سے وہ ضرب ہے دوسرے اعتبار سے وہ تادیب ہے, فعل ایک ہی ہے تو دونوں کا زمانہ ایک ہے, فعل دو ہیں ہی نہیں کہ زمانہ الگ ہونے کا احتمال آ جائے. तो फिर जब ये तीनों शर्तें पूरी होंगी तो अब इस लाम का हजफ करना और तादीब को मंसूब पढ़ना जायज है, वाजिब नहीं है। आप चाहें तो इसी तरह कहें ज़रबतुहु लितादीब, और आप चाहें तो लाम को हजफ कर दें और यूं पढ़ें ज़रबतुहु तादीबन। और फिर यहां पर इबारत आई थी, इबारत आई थी कि वह इन नमा यजूजु हज़्फुहा, यहां इश्काल हुआ था कि साहिबे काफिया के पास तो अल्फाज थोड़े होते हैं, उन्होंने तो कम से कम लफ्जों में लंबी बात करना होती है, तो यहां सिर्फ यजूजू कह देते, यजूजू की जमीर लौटा देते, पीछे तकदीर है लाम का जिक्र आया था कि इन नमा यजूजू इजाका नफ़ेलन, लेकिन यहां साहिब काफिया ने जमीर जिक्र नहीं की बल्कि हज़्फुहा लेकर आ गए कि लाम का हजफ जायज है। तो ये साहिब काफिया ने जाहिर को छोड़कर हज़्फुहा के लफ्ज की तरफ क्यों उदूल किया? जाहिर तो क्या था, क्या लानी चाहिए? जमीर लानी चाहिए, तो जाहिर को छोड़कर हज़्फुहा का लफ्ज क्यों जिक्र किया, इस उदूल की वजह क्या है? मैंने बताया था कि फसीह बलीग आदमी जब जाहिर को छोड़कर किसी दूसरी चीज की तरफ उदूल करता है तो उसमें हमेशा कोई ना कोई नुक्ता होता है, तो वो नुक्ता यहां पर क्या है? तो उलमा फिर बयान फरमाते हैं कि भाई दरअसल यहां दो चीजें हैं, एक है जिक्र लाम, एक है तकदीर लाम। जिक्र लाम के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो यह कि उसको लफ्जों में भी बाकी रखा जाए और दूसरा नीयत में भी बाकी है, यानी उसका माना भी मुराद होता है। लफ्ज जब जिक्र है तो उसका साथ माना भी मुराद होता है, तो जिक्र लाम में दो चीजें आ गईं, इबका फी लफ्ज भी और इबका फी नीयत भी, जबकि दूसरी चीज इसके मुकाबले में है तकदीर लाम। तकदीर लाम के अंदर भी दो चीजें हैं, एक तो उस लफ्ज को हजफ कर लिया जाता है अलबत्ता उसका माना अभी भी नीयत में है, तो तकदीर लाम में हजफ आनी लफ्ज होता है और इबका फी नीयत होता है। तो जिक्र में कितनी चीजें, दो, इबका फी लफ्ज और इबका फी नीयत, और तकदीर लाम के अंदर भी दो चीजें, कौन सी हैं? हज़फ अनिल लफ्ज और इबका फी नीयत। तो अगर यूं कह देते कि वह इन्नमा यजूज़ और हुआ जमीर लौटा देते तकदीर लाम की तरफ, तो फिर इस सूरत में तो आगे शर्त जो है वो तकदीर लाम की शर्त बन जाती, और तकदीर लाम में दो चीजें हैं, एक लफ्ज को हजफ क्यों किया और दूसरा नीयत में क्यों बाकी रखा, दोनों की शर्त बन जाती, हालांकि ये तो दोनों की शर्त नहीं है, इसलिए क्योंकि ये जो दो चीजें हैं तकदीर लाम में, एक हजफ आनी लफ्ज, ये है खिलाफुल असल, असल तो क्या है हजफ ना किया जाए बल्कि जिक्र किया जाए, और तकदीर लाम में दूसरी चीज है इबकाफ नीयत, ये तो असल के मुताबिक है, जिक्र में भी क्या था इबकाफ नीयत और तकदीर में भी क्या है इबकाफ नीयत, ये तो असल के मुताबिक है और असल के लिए किसी दलील या शर्त वगैरह की जरूरत नहीं होती, शर्त या दलील की जरूरत सिर्फ खिलाफुल असल की सूरत में होती है, तो लिहाजा तकदीर लाम में जो हजफ अनी लफ्ज है यह है खिलाफुल असल, और इबकाफ नीयत वो तो असल के मुताबिक है, उसके लिए किसी शर्त की जरूरत नहीं। तो चूंकि आगे जो शर्त जिक्र हो रही थी वो सिर्फ हजफ अनी लफ्ज की जिक्र हो रही थी, तो अगर तकदीर लाम कह देते तो फिर तो यूं लगता कि यह दोनों की शर्त है, हजफ अनी लफ्ज की भी शर्त है और इबकाफ नीयत की भी शर्त है, हालांकि ये इबकाफ नीयत तो असल के मुताबिक है, तो लिहाजा ये सिर्फ हजफ की शर्त थी, तो इसलिए हजफ का लफ्ज लेकर आए, तकदीर का लफ्ज यहां नहीं लाया, उसकी तरफ जमीर राजे नहीं की। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि ये जो शर्तें लगाई कि वो फेल होना चाहिए, मफूल लहू के मंसूब होने की शर्त क्या है कि वो फेल यानी मसदर होना चाहिए, कहते हैं इसके जरिए एहतराज किया इस जैसी मिसालों से, जितुका लिस्समनी, मैं आपके पास घी की वजह से आया हूं। अब यहां पर ये जो लिस्समन है ये इससे आप लाम को हजफ नहीं कर सकते क्योंकि ये फेल नहीं है, ये तो आयन है, एक चीज है जिसका अपना अलग वजूद है। किस चीज की शर्त जिक्र हो रही है? लाम को हजफ करने की। तो जितुका लिस्समन, इससे लाम हजफ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि पहली शर्त क्या थी कि वो मस्दर होना चाहिए और ये समन ये तो मस्दर नहीं है, ये तो ऐन है। और फिर दूसरी शर्त क्या थी कि दोनों का फाइल एक होना चाहिए, इसके जरिए एहतराज किया, जितु कली मजी का इया, मैं आपके पास आया इसलिए क्योंकि आप मेरे पास आए थे। तो फेल भी मजीअत का जिक्र है और आगे मफूल लहू भी क्या है, मजीअत, लेकिन दोनों में फर्क है। जो फेल है उसके अंदर मुतकल्लिम की मजीअत जिक्र हो रही है और जो मफ़ऊल लहू है उसके अंदर मुखातब की मजीअत जिक्र हो रही है। मैं आपके पास आया इसलिए क्योंकि आप मेरे पास आए थे, तो मैं आपके पास आया ये देखो मुतकल्लिम का आना है, और क्योंकि आप मेरे पास आए थे ये देखो मुखातब का आना है, तो दोनों का फाइल एक नहीं है, लिहाजा यहां भी शर्त पूरी नहीं। लिहाजा यहां, लिहाजा जितु का लिमजीई का इयाया, यहां लिमजीई का से लाम को हजफ करके इस पर नसब पढ़ना जायज नहीं, क्योंकि इसके अंदर दूसरी शर्त पूरी नहीं है। बात समझ में आ गई। और फिर कहा था तीसरी शर्त यह है कि दोनों मिले हुए हों, यानी दोनों का जमाना एक हो, और बतलाया था कि जमाना एक होने के अंदर दो सूरतें हैं, या तो दोनों का जमाना बिल्कुल मुत्तहिद होगा, जैसे जरब तुहू तादीबन, जरब और तादीब का जमाना बिल्कुल मुत्तहिद है क्योंकि एक ही फेल है, एक एतबार से वो जरब है तो दूसरे एतबार से तादीब है, तो दोनों का जमाना बिल्कुल मुत्तहिद है। जबकि बाज औकात एक का जमाना लंबा होता है और दूसरे का जमाना छोटा होता है, यानी फेल और मफूल लहू इनमें से एक का जमाना कम होगा और दूसरे का जमाना लंबा होगा, तो वो जो कम वाला है वो दूसरे के जमाने का बाज हुआ, उसका जुज हुआ, लेकिन बहरहाल होंगे दोनों इकट्ठे ही भाई। जैसे काद तो अनिल हर भी जुबनान, मैं जंग से बैठा बुजदिली की वजह से। अब देखो बुजदिली का जमाना तवील है, बुजदिली उस आदमी की सिफत है जो पहले भी थी, जंग से बैठने के दौरान भी थी और जंग से बैठने के बाद भी है। तो कुऊद अनिल हर्ब, जंग से बैठना, ये तो एक वक्त में हुआ है, इसका जमाना थोड़ा है और बुजदिली का जमाना लंबा है। तो देखो जंग से बैठने का जमाना ये जुज है किसका, बुजदिली के जमाने का। बात समझ में आ गई, क्योंकि बुजदिली उससे पहले भी है और उसके बाद भी है, लेकिन बहरहाल जिस वक्त जंग से बैठा उस वक्त बुजदिली भी थी, तो दोनों का जमाना एक हुआ, दोनों इकट्ठे पाए गए। और कभी इसका बरअक्स होता है, यहां तो देखो काद तो अनिल हर्ब जुबनन, मफ़ऊल लहू का जमाना लंबा था और कुऊद अनिल हर्ब वो जो फेल जिक्र हुआ उसका जमाना उसका बास था। और कभी इसका बरअक्स होता है, फेल का जमाना लंबा होता है और मफ़ऊल लहू का जमाना उसका जुज और उसका बास होता है। जैसे शहीद तुल हर्ब, मैं उस जंग में हाजिर हुआ, ईकान ले सुलह बैन अल फरीकैनी, ताकि मैं सुलह करवा दूं उन दो फरीकों में। तो देखो जंग में हाजिर होना यह जमाना है तवील, और सुलह करवाना, सुलह तो दरमियान में किसी एक वक्त के अंदर होगी तो उसका जमाना है थोड़ा, और जंग में हाजिर होने का जमाना ज्यादा है, लेकिन बहरहाल जिस वक्त सुलह करवाई उस वक्त भी यह जंग में हाजिर था। दोनों इकट्ठे तो हैं, अलबत्ता एक का जमाना तवील है भाई। और फिर इन्होंने आपको यह भी बतलाया था कि यह तीन शर्तें क्यों लगाई गई मफ़ऊल लहू के मंसूब होने की, तो वजह जिक्र की थी साहिबे जामी ने कि इन तीन शर्तों की वजह से मफ़ऊल लहू की मुशाबहत आ जाएगी मफ़ऊल मुतलक के साथ, और मफ़ऊल मुतलक वो तो फेल का जुज होता है, ज़रबतुहु ज़रबन, ये ज़रबन ये मफ़ऊल मुतलक है, वो मस्तर जो माकबल फेल के माना में हो उसे क्या कहते हैं, मफ़ऊल मुतलक। तो ये जो मस्तर है ये तो फेल का जुज होता है, मैंने बताया था फेल का माना मुरक्कब है कितनी चीजों से, तीन चीजों से, मस्तर, जमाना और निस्बत इलल फाइल। तो देखो इस ज़रबतु के अंदर भी ज़रब मौजूद है, तो लिहाजा फेल ये मफ़ऊल मुतलक को नसब क्यों देता है, क्योंकि उसका फेल से बड़ा गहरा ताल्लुक है, वो फेल का जुज है। तो जब मफ़ऊल लहू की मुशाबहत इस मफ़ऊल मुतलक से आएगी तो इसमें भी फेल अमल कर सकता है और इसको नसब दे सकता है, और ये मुशाबहत इन तीन चीजों से आएगी। कौन सी तीन चीजें, कि मफ़ऊल लहू मस्तर हो और उसका और फेल दोनों का फाइल एक हो और दोनों का जमाना मुत्तहिद हो, तो इन तीन चीजों की वजह से इसकी मुशाबहत आ जाएगी मफ़ऊल मुतलक के साथ, क्योंकि मफ़ऊल मुतलक में भी यही तीनों चीजें होती हैं, मफ़ऊल मुतलक मस्तर भी होता है और उसका और माकबल वाले फेल का फाइल एक ही जात होती है, क्योंकि वो एक ही फेल है वहां पर, कोई दूसरा तो फेल है ही नहीं, और तीसरा दोनों का जमाना भी एक होता है क्योंकि फेल एक है भाई, जब फेल एक है तो जाहिर सी बात है जमाना कोई दूसरा फेल है ही नहीं वहां पर। बात समझ में आ गई जी। तो इसकी वजह से फिर जब मुशाबहत आ जाएगी तो फिर मफ़ऊल लहू को नसब देना सही हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमने मफ़ऊल माहू की भी तारीफ पढ़ी थी गुज़श्ता सबक में, साहिबे काफिया ने आपको बतलाया था अल मफ़ऊल माहू हुआ मस्कूर उन बाद अल वावी, के मफ़ऊल माहू जो है वाव के बाद मस्कूर होता है, लि मुसाहबती ही मामूल फ़िअलिन, इस वजह से कि वो मुसाहिब होता है मामूल फेल का, वो मफूल माहू मुसाहिब यानी साथी होता है मामूल फेल का। मैंने मिसाल से वजाहत की थी, मसलन मैं कहता हूं जा जैदुन व अमरुन, मैंने अमर का आतफ किया जैद पर, और यह आतफ सिर्फ मुशारकत फिल फेल बतलाता है कि ये दोनों इस फेल के करने में शरीक हैं। जा जैदुन व अमरुन, जैद ने भी मजीअत वाला फेल किया है और अमर ने भी मजीअत वाला फेल किया है। बाकी कोई तफसील इस जुमले के अंदर नहीं, क्योंकि यहां वाव आया है, वाव सिर्फ जमा का फायदा देता है कि ये दोनों इस काम के करने में जमा है। बाकी कोई तफसील नहीं कि दोनों ने ये आने का फेल इकट्ठा किया या दोनों अलग अलग आए हैं, और पहले जैद आया है और बाद में अमर आया है, या अमर पहले आया और जैद बाद में, कोई तफसील नहीं। आप तमाम सूरतों में कह सकते हैं, चाहे ये इकट्ठे आए हों, चाहे अलग आए हों, चाहे जैद पहले हो चाहे अमर पहले हो, तमाम सूरतों में आप कह सकते हैं जा जैदुन व अमरुन, क्योंकि ये आतफ है। आतफ सिर्फ मुशारकत फिलफेल बतलाता है कि मातूफुन अलैह और मातूफ दोनों इस फेल में शरीक हैं, न ये तरतीब का फायदा देता है और ना कोई और इकट्ठे होने का फायदा देता है। लेकिन आपका मकसद यह है, आप दूसरे को बतलाना चाहते हैं कि दोनों इकट्ठे आए हैं, तो उसकी एक सूरत यह है कि आप मान का लफ्ज़ साथ अलग ले आए, जा जैदुन व अमरुन मान, जैद और अमर इकट्ठे आए। तो अब ये इकट्ठे होने का माना किसने अदा किया? मान ने। लेकिन इससे मुख्तसर तरीका यह है कि आप जो अमरुन है उसको मातूफ ना बनाएं, बल्कि आप उसको मफूल माहू बना दें, और मफूल माहू तो मंसूब होता है, अब आप उस पर नसब पढ़ें, जा जैदुन व अमरन। अब ये व अमरन पर जैसे ही आपने नसब पढ़ा, सुनने वाला समझ गया कि ये मातूफ नहीं, क्योंकि अगर ये मातूफ होता तो मातूफ पर तो वही एराब आता है जो मातूफुन आलय पर होता है, और मातूफुन आलय तो यहां मरफू है, तो इसको भी मरफू होना चाहिए था, लेकिन आपने रफा नहीं पढ़ा बल्कि क्या पढ़ा है? नसब। मालूम हुआ ये मातूफ तो है नहीं, तो ये फिर मफूल माहू है। तो जा जैदुन व अमरन, अब इसका क्या माना है? आया जैद अमर के साथ, मालूम हुआ दोनों इकट्ठे आए हैं, तो इसने मुशारकत फिल फेल के साथ साथ मुशारकत फिल जमान का भी फायदा दिया कि फेल में भी दोनों शरीक हैं और जमाने में भी दोनों शरीक, यानी दोनों का जमाना भी एक ही है इस फेल को करने का भाई। और फिर इन्होंने यह भी बतलाया था कि यह जो फेल है ये लफ्जों में भी हो सकता है और माना के एतबार से भी हो सकता है। जा जैदुन व अमरन, यहां जा का फेल देखो लफ्जों में है और माना के एतबार से भी फेल हो सकता है, जैसे मा लका व जैदन, यहां लफ्जों में तो फेल नहीं लेकिन माना के एतबार से फेल मौजूद है। अय मा तस्नाउ व अमरन, आप अमर के मायियत में क्या कर रहे हैं, माना समझ में आ गया जी। अब आइए आज के सबक पर भाई, कहते हैं अल मफूल माहू अल्लज़ी फुइला लिमुसाहबतिहि बि अन तकून अल फाइल मुसाहिबन लहू फी सुदूर अल फिअल अनहु अव अल मफूल बिहि फी वुकू अल फिअल अलैह। भाई अल मफूल माहू अल्लज़ी फुइला लिमुसाहबतिहि, ये आप सबकी किताबों में लिमुसाहबती ही है, हां याद रखो ये किताबत की गलती है, यहां बिमुसाहबती ही होना चाहिए। तो यहां भी मुसाहबती ही होना चाहिए, लाम नहीं होना चाहिए बल्कि बा होनी चाहिए, और जामी के दीगर नुस्खों में यहां बा मौजूद है, और नीज लाम के साथ माना भी सही नहीं बनता, माना भी सही नहीं बनता, क्योंकि ये लाम आगे देखो, चूंकि आगे मतन आ रहा है ना, हुआ मस्कूरुन बादल वावी ले मुसाहबती ही मामूल फेलिन, चूंकि मतन के अंदर लाम था तो किसी लिखने वाले ने यहां पर भी बेमुसाहबती ही में बा की जगह क्या लिख दिया? लाम लिख दिया। लेकिन वो लाम आगे चलकर साहिबे जामी आपको बतलाएंगे कि वो लाम तालील के लिए है, इल्लत बयान करने के लिए है, और यहां पर ये फिर माना सही नहीं बनता। फिर देखो माना क्या बनता है, अल्लज़ी फुइला लिमुसाहबती ही, कि मफ़ऊल लहू वो चीज है के फुइला के फेल को किया जाए, ले मुसाहबती ही उस मफूल माहू की मुसाहबत की वजह से, मफूल लहू की मुसाहबत की वजह से फेल को किया जाए। हालांकि वो जो फेल किया जाता है वो मफूल माहू की मुसाहबत की वजह से फेल किया जाता है या मफूल माहू की मुसाहबत के साथ फेल किया जाता है? मफूल माहू की मुसाहबत के साथ फेल को किया जाता है, उसकी मुसाहबत की वजह से फेल नहीं किया जाता भाई, कि अगर वो मुसाहिब ना होता तो फेल ही ना होता, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई? तो यहां लाम की जगह क्या है? बा है, आई बे मुसाहबती ही। और चंद सत्रें आगे, छह सात आठ सत्रों के बाद देखें, साहिब जामी फिर दोबारा इसी जैसी इबारत ला रहे हैं। देखिए, ये हुआ मजकूर उन बादल वावी, ये जो मतन आ रहा है आगे, हुआ मजकूर उन बादल वावी, इससे एक सतर पहले आ रहा है, अल्लदी फुइला फिअलुन बिमुसाहबतिही। देखो यहां पर भी बा मौजूद है, तो जैसे वहां वो मफूल माहू की तफसीर कर रहे थे, यहां पर भी ये मफूल माहू ही की तफसीर कर रहे हैं, अल्लदी फुइला फिअलुन बिमुसाहबतिही, यहां देखो बा मौजूद है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं अल मफूल माहू अय्यल्लदी फुइला बिमुसाहबतिही, मफूल माहू जो है अयिल्लदी, यानी वो चीज के फुइला के फेल को किया जाए, बिमुसाहबतिही उसकी मुसाहबत के साथ। भाई मतन में आया अल मफूल माहू, साहिब जामी उसकी तफसीर कर रहे हैं, अयिल्लदी भाई अल्लजी ले आए, बतलाना ये चाहते हैं कि अल मफूल पर जो अलिफ लाम आया वो दर असल इसमें मौसूल है बमाने अल्लजी के है। भाई मैंने आपको बतलाया था कि जो इसमें फाइल और इसमें मफूल के सीगे हैं, इन पर जो अलिफ लाम आता है ये अलिफ लाम इस्मी है, यानी इसमें मौसूल है। भाई तो सूरत तो अलिफ लाम जैसी है लेकिन हकीकत में ये इसमें मौसूल है, और आगे जो सीगा इसमें फाइल या इसमें मफूल का आ रहा हो वो उसका सिला होता है, क्योंकि मौसूल के लिए हमेशा क्या चाहिए? सिला चाहिए। तो यानी अज़ारिबु ये किस माना में था? अल्लज़ी यज़रिबु। और अल-मज़रूब किस माना में था? अल्लज़ी युज़रबु। तवज्जो है? तो यूं समझो असल में था ये अज़ारिब, असल में था अल्लज़ी यज़रिबु, फिर अल्लज़ी को अलिफ लाम वाली सूरत दे दी गई, और अलिफ लाम वो तो अब यज़रिबु फेल पर दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि अलिफ लाम तो सिर्फ इसम पर दाखिल होता है, तो लिहाजा फिर मजबूरन यज़रिबु फेल से भी इसम बना लिया गया, यानी इस ये फेल मारूफ है तो फेल मारूफ से इसमें फाइल बना लिया गया, तो क्या बन गया? अज़ारिब। तो ये किस माना में है? अल्लज़ी यज़रिबु। और इसी तरह अल मज़रूब भाई ये असल में क्या था? अल्लज़ी युज़रबु भाई। तो कहते हैं अल मफूल माहू अय्यल्लज़ी फुइला बिमुसाहबतिही, मफूल माहू जो है वो चीज है कि फेल को किया जाए, बिमुसाहबतिही उसकी मुसाहबत के साथ, बिअन तकून अल फाइलु, ये बात तस्वीरिया है, सूरत बयान कर रहे हैं कि फेल को उसकी मुसाहबत के साथ किस तरह किया जाएगा, उसकी सूरत क्या है, उसकी सूरत क्या है। भाई पहले तो एक बात यह याद रखना कि यह मफूल माहू फाइल के साथ भी आता है और मफूल बिही के साथ भी आता है, फाइल के साथ भी आता है और मफूल बिही के साथ भी आता है। मैंने जैसे मिसाल लिखवाई थी आपको, जा जैदुन व अमरन, जा जैदुन व अमरन, ये व अमरन क्या है? मफूल माहू है, इसका नसब बतला रहा है, ये मातूफ नहीं हो सकता, अगर ये मातूफ होता तो माकबल में मातूफुन आले तो मरफू है, फिर तो इसको भी मरफू होना चाहिए था, तो ये मफूल माहू है, और माकबल में जो जैद है वो फाइल है, वो फाइल है, और फाइल में फेल अमल करता है, तो फाइल जो है वो मामूले फेल हुआ, वो मामूले फेल हुआ। अब देखो इस पर वो तारीफ जरा मुंतबिक करें, क्या तारीफ की थी? मफूल माहू वो है जिसको वाओ के बाद जिक्र किया जाए, जा अज़ैदुन व आमरान, ये व आमरान भी क्या है? किसके बाद जिक्र है? वाओ के बाद जिक्र है, और किस लिए जिक्र है? ले मुसाहबतिही, इसलिए क्योंकि ये मुसाहिब है, साथी है, मामूल फेलिन किसका साथी है? मामूल ये फेल का, और वो मामूल फेल पीछे क्या है? फाइल है, क्या है? फाइल। तो देखो ये फाइल का मुसाहिब है, और याद रखो इसी तरह कभी ये मफूल बिही का मुसाहिब होगा, यानी इससे माकबल जो है वो मफूल बिही होगा भाई, फाइल नहीं होगा। तो मालूम हुआ मफूल माहू फाइल का मुसाहिब भी हो सकता है और मफूल बिही का भी मुसाहिब हो सकता है। फिर एक और बात याद रखना, ये जो फाइल होता है इससे फेल का सुदूर होता है, यानी फेल इससे सादिर होता है, यानी ये फेल को करता है। जा अज़ैदुन, जैद आया, ये आने का फेल किसने किया? जैद ने। या यूं कहें ये आने का फेल किससे सादिर हुआ है? زید سے صادر ہوا ہے، یعنی زید نے یہ فعل خود کیا ہے بھائی. تو فاعل کے لیے صدور کا لفظ بولتے ہیں کہ فاعل سے فعل کا صدور ہوتا ہے، یعنی وہ فعل کو کرتا ہے بھائی. اور مفعول بہی کے لیے کہتے ہیں مفعول بہی پر فعل واقع ہوتا ہے، ضربت زیدن، یہ زیدن مفعول بہی ہے. تو کیا کہیں گے، یہ ضرب کا فعل زید سے صادر ہوا ہے یا زید پر واقع ہوا ہے؟ زید پر یہ واقع ہوا ہے، صادر تو یہ متکلم سے ہوا ہے، متکلم فاعل ہے بھائی. تو فاعل کے لیے کیا لفظ بولتے ہیں کہ اس سے فعل کا صدور ہوتا ہے، اور مفعول بہی کے لیے کیا کہتے ہیں کہ اس پر فعل کا وقوع ہوتا ہے. تو اب آپ کو بتائیں گے کہ مفعول معہ کسے کہتے ہیں، جو معمول فعل کا مصاحب ہوتا ہے، اور معمول فعل فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے، اور مصاحب اگر وہ فاعل کا ہو تو کیا معنی ہوگا؟ توجہ ہے، مفعول معہ اگر مصاحب ہے کس کا؟ فاعل کا. تو معنی یہ ہے کہ جس طرح یہ فعل فاعل سے صادر ہوا ہے، اسی طرح مفعول معہ سے بھی صادر ہوا ہے، وہ اس کا ساتھی ہے اس فعل کے صدور کے اندر. اور جب مفعول معہ مفعول بہی کے ساتھ آئے، اس کا مصاحب ہو، تو پھر کیا معنی ہوگا؟ کہ جس طرح یہ فعل مفعول بہی پر واقع ہوا ہے، اسی طرح یہ مفعول معہ بھی اس مفعول بہی کا مصاحب ہے کہ اس پر بھی یہ فعل واقع ہوا ہے. تو مصاحبت کا معنی سمجھ میں آیا، فاعل کے ساتھ مصاحبت کا کیا معنی؟ کہ جس طرح فعل فاعل سے صادر ہوا ہے، اس سے بھی صادر ہوا ہے. اور اگر مفعول معہ مصاحب ہو کس کا؟ مفعول بہی کا. تو کیا معنی؟ کہ جس طرح مفعول بہی پر فعل واقع ہوا ہے، یہ اس کا مصاحب ہے، اس پر بھی فعل واقع ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں بِأَن تَكُونَ الْفَاعِلُ مُصَاحِبًا لَهُ بَائِ صورت، کہ وہ جو فاعل ہے مصاحبًا لَهُ، وہ مصاحب ہے اس لَهُ اَي لِلْمَفْعُولِ مَعَهُ، ہا ضمیر راجع ہے مفعول معہو کو، کہ وہ فاعل مصاحب ہے مفعول معہو کا، فی صدور الفعل عنہ، اپنے سے فعل کے صادر ہونے میں. یہ عنہ کی ہا ضمیر راجع ہے فاعل کو. یوں کریں یہ فی صدور الفعل عنہ، ذرا اس کو فاعل کے پاس لے آئیں، اور مصاحبان کو ذرا آخر میں لے جائیں. بِأَن تَكُونَ الْفَاعِلُ فی صدور الفعل عنہ مصاحبًا لَهُ. اب سنو ترجمہ، بائی صورت کہ وہ فاعل فی صدور الفعل عنہ، اپنے سے فعل کے صادر ہونے میں مصاحبًا لَهُ، مصاحب ہے کس کا؟ مفعول معہ کا. بھائی فعل کس سے صادر ہوا؟ فاعل سے. تو فاعل کی اپنی ذات سے فعل صادر ہوا ہے، اس نے فعل کیا ہے، تو فاعل اپنے سے فعل کے صادر ہونے میں مصاحب ہے کس کا؟ مفعول معہ کا. آپ کہیں گے بھئی آپ نے تو ہمیں کہا تھا مفعول معہ مصاحب ہوتا ہے. بھئی یہ دونوں طرح سے فعل ہے، جب مفعول معہ مصاحب ہے فاعل کا، تو فاعل مصاحب ہوا کس کا؟ مفعول معہ کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں بِأَن تَكُونَ الْفَاعِلُ بَائِ صورت کے وہ فاعل جو ہے وہ مصاحب ہو مفعول معہو کا، فی صدور الفعل عنہ، اپنے سے فعل کے صادر ہونے میں وہ فاعل مصاحب ہو مفعول معہو کا، یعنی اس کے ساتھ مل کر اس نے یہ فعل کیا ہے، جیسے اس سے فعل صادر ہوا ہے مفعول معہو سے بھی صادر ہوا ہے. اَوِ الْمَفْعُولُ بِهِ، یہ اس کا عطف ہے پیچھے جو الفاعل کا لفظ آیا تھا، یا اس کی صورت یہ ہے مصاحبت کی کہ وہ جو مفعول بہی ہے وہ مصاحب ہے مفعول معہ کا، فی وقوع الفعل علیہ، اپنے اوپر فعل کے واقع ہونے میں. یہ علیہ کی ہا ضمیر مفعول بہی کو راجع ہے، فعل کس پر واقع ہوتا ہے؟ مفعول بہی پر، کہ وہ مفعول بہی، یہاں مصاحبًا لہو کا لفظ یہاں بھی لے آئیں، کہ المفعول بہی مصاحبًا لہو فی وقوع الفعل علیہ، کہ وہ مفعول بہی مصاحب ہوتا ہے مفعول معہ کا. بھئی کس چیز میں مصاحب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں فی وقوع الفعل علیہ، اپنے اوپر فعل کے واقع ہونے میں. مفعول لہو، اس کے اپنے اوپر فعل واقع ہوا ہے، تو اپنے اوپر فعل کے واقع ہونے میں وہ مصاحب ہے کس کا؟ مفعول معہ کا، کہ یعنی اس پر بھی فعل اس کے ساتھ ہی واقع ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. فقوله معه مفعول ما لم يسمى فاعله. جی اب آگے ترکیب کی کچھ باتیں آ گئیں، کچھ ترکیب حل کر لیں پھر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. بھائی سب سے پہلے تو یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ بعض اوقات فعل براہ راست کسی لفظ میں عمل نہیں کر سکتا، تو پھر حروف جارہ کا سہارا لیا جاتا ہے. مثلا ذہبا، ذہبا کا معنی ہے جانا، اور یہ فعل لازم ہے، اس کے لیے مفعول نہیں آتا. लेकिन मैं इसको मुतअद्दी बनाना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि मैं जैद को ले गया। और ज़हबा का माना तो है जाना, इसके लिए तो मफूल आता ही नहीं, तो फिर एक तरीका यह है कि इसको बाबे इफ़ाल वगैरह में ले जाते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि इसको बा के जरिए मुतअद्दी करते हैं, यानी किसी हरफे जर का सहारा लिया जाता है। तो यहां पर भी अब मैं कहना चाहता हूं कि मैं जैद को ले गया, और ज़हब तू तो जैद को नसब नहीं दे सकता, तो मैंने बा का सहारा लिया और बा हरफे जर ले आया और क्या कहा, ज़हब तू भी ज़ैदिन। तो माना क्या है, मैं जैद को ले गया। तो अब ये जो जैद है जिसमें ज़हबा फेल अमल कर रहा है बवास्ता हरफे जर के, ये भी मफूल भी ही है, ये भी एक मफूल भी ही सरीह होता है, यानी जिसको फेल बराह रास्त नसब देता है। सरीह का माना साफ लफ्जों में, यानी वाज है, फेल उसको नसब दे रहा है, साफ लफ्जों में वो मफूल भी ही है। और ये जिस पर हरफे जर दाखिल हो ये भी क्या होता है, मफूल भी ही, अलबत्ता इसको मफूल भी ही गैर सरीह कहते हैं। मालूम हुआ ज़हब तो बि ज़ैदिन, ये जैद क्या है, मफूल भी ही गैर सरीह है। फिर आप जानते हैं कि फेल को जब मजहूल बनाया जाता है, फेल को जब मजहूल बनाते हैं तो फाइल को हजफ कर लिया जाता है, और वो जो मफूल बिही होता है उसको मफूल मालम युसम्मा फाइलुहू, यानी नायबुल फाइल बना देते हैं। ज़रबतु ज़ैदन, ये ज़ैदन मफूल बिही है, मैंने जैद की पिटाई की, अब मैं यहां इसको फेले मजहूल बनाता हूं तो फाइल ता को हजफ कर दूंगा और कैसे कहूंगा, ज़ुरिबा ज़ैदुन, वो जो ज़ैदन मफूल बिही था मैंने उसको नायबुल फाइल बना दिया। तो ये तो आसान है, जहां पर मफूल बिही हो जब फेले मजहूल लाए तो उस मफूल बिही को आप नायबुल फाइल बना दें। लेकिन बाज़ औक़ात फेल के लिए मफूल बिही होता ही नहीं, जैसे अभी मैंने मिसाल जिक्र की, ज़हबतु बि ज़ैदिन, ये ज़हबतु के लिए तो मफूल बिही है ही नहीं, अलबत्ता ये बि ज़ैदिन जो है ये भी मफूल बिही ही है। तो लिहाजा जब मैं इससे फेले मजहूल बनाऊंगा ज़ुहिबा बि ज़ैदिन, तो यही अब बि ज़ैदिन क्या बन जाएगा, इसके लिए नायबुल फाइल बन जाएगा। ये ज़ैद क्या था, मफूल बिही गैर सरीह था, और जब फेले मजहूल लाए तो मफूल बिही को क्या बना देते हैं, नायबुल फाइल बना देते हैं। तो यहां पर भी अब इसको क्या बना देंगे, नायबुल फाइल। तो ज़ुहिबा बि ज़ैदिन, ज़ुहिबा बि ज़ैदिन, तो इसमें फिर यूं कहते हैं कि ये जार मजरूर जो है ये नायबुल फाइल है, ये जार मजरूर नायबुल फाइल है। और मैंने उसका तरीका मैं पहले भी कई दफा जिक्र कर चुका हूं कि जार मजरूर के नायबुल फाइल होने का माना यह है कि हकीकत में वो जो मजरूर है वो है नायबुल फाइल, क्योंकि बा तो हर्फ है भाई, ज़ुहिबा बि ज़ैदिन बा तो हर्फ है, तो असल नायबुल फाइल कौन है, जैद है। लेकिन चूंकि जार मजरूर का ताल्लुक बड़ा मजबूत होता है तो यूं ही कह दिया जाता है कि ज़ुहिबा का इस्नाद हो रहा है बि ज़ैदिन जार मजरूर की तरफ, ज़ुहिबा का इस्नाद है किसकी तरफ, जार मजरूर की तरफ, और यह है नायबुल फाइल इस फेले मजहूल के लिए। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा अब तरकीब कीजिए, अल मफूल बिही, अल मफूल बिही, अभी ऊपर मतन में आया था अल मफूल माहू, अल मफूल का तर्जमा साहिब जामी ने क्या किया, अल्लज़ी फुइला के साथ किया। तो यहां पर भी अल मफूल बिही, अल मफूल फीही, अल मफूल लहू, इनकी क्या तरकीब है, वो तरकीब समझ लो। अल मफूल बिही जो है इसके अंदर यह अलिफ लाम इस्मी है, और यह मफूल किस माना में है, जैसे अज़्ज़ारिब किस माना में था, अल्लज़ी यज़रिबु, अल-मज़रूब किस माना में था, अल्लज़ी युज़रबु। तो देखो इसमें फाइल के लिए फेले मारूफ निकालते हैं और इसमें मफूल के लिए फेले मजहूल निकालते हैं, और फिर मौके के मुताबिक कभी माजी ले आते हैं और कभी मुजारे ले आते हैं। तो अल मफूल बिही, तो ये अल मफूल किस माना में हुआ, अल्लज़ी फुइला के माना में हुआ, अल्लज़ी फुइला, और बिही को उसी तरह साथ रखो, तो अल मफूल बिही किस माना में हुआ, अल्लज़ी फुइला बिही। बात समझ में आ गई जी। और आगे फिर तरकीब क्या होगी, अल्लज़ी इसमें मौसूल, फुइला फेले मजहूल, और फेले मजहूल के लिए क्या चाहिए, नायबुल फाइल चाहिए। तो कहते हैं ये जो बिही जार मजरूर आगे आ रहा है इसकी तरफ है इस फेल का इस्नाद, और ये जार मजरूर इसका नायबुल फाइल है, हकीकत में मजरूर नायबुल फाइल है, लेकिन कहते कैसे हैं कि जार मजरूर जो है वो इसका नायबुल फाइल है। बात समझ में आ गई। फिर सुनो तरकीब, अल मफूल बिही किस माना में हुआ, अल्लज़ी फुइला बिही के माना में, अल्लज़ी इसमें मौसूल, फुइला फेल, बा जारा, हा जमीर मजरूर महल्लन, मजरूर महल्लन है, यह है महल्ले करीब क्योंकि बा जारा दाखिल है, और महल्ले बईद क्या है इसका, यह मरफू है, नायबुल फाइल है फुइला फेल के लिए। तो जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिक हुए किससे, फुइला फेल से, और यही नायबुल फाइल भी हैं, तो फेले मजहूल अपने नायबुल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर यह सिला हुआ किसके लिए, मौसूल के लिए। तो यह आप पूरे जुमले को मौसूल से जोड़ना चाहते हैं, और मैंने आपको बतलाया था कि जुमला और शिबे जुमला को जब भी किसी चीज से जोड़ना हो तो दरमियान में रबत जरूरी है। तो यहां पर और तो कोई जमीर है ही नहीं, फुइला के अंदर खुद कोई जमीर नहीं, क्योंकि आगे बिही जो है वो है नायबुल फाइल भाई, तो ये बिही में हा जमीर ये राजिअ है ये अल्लज़ी को, अल्लज़ी फुइला बिही, ये हा जमीर किसको राजे, इसमें मौसूल अल्लज़ी को, इससे मौसूल सिला में रबत आ गया, अल्लज़ी फुइला बिही के वो चीज के फेल को किया गया बिही उसके साथ या उसके जरिए। याद रखो ये जो अल मफूल बिही इसके अंदर ये जो बा है आप इसको इल्साक के लिए भी बना सकते हैं और सबबियत के लिए भी बना सकते हैं। तवज्जो है, इल्साक का माना एक चीज का दूसरी चीज के साथ जोड़ना, मुतअल्लिक करना। तो अल्लज़ी फुइला बिही ये बा इल्साक के लिए भी हो सकती है और सबबियत के लिए भी। अगर इल्साक के लिए हो तो फिर क्या तर्जमा करेंगे, अल्लज़ी फुइला वो चीज फुइला के फेल को किया गया बिही उसके साथ, वो चीज के फेल को उसके साथ किया गया। और अगर बा को सबबियत के लिए बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं, अल्लज़ी फुइला बिही अल्लज़ी वो चीज फुइला के फेल को किया गया बिही उसके जरिए उसके सबब से। भाई देखो ज़रबतु ज़ैदन, ये ज़ैदन क्या है, मफूल बिही है, ये मफूल बिही है। इसको मफूल बिही क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि माकबल में जो जरबतु का फेल है वो इसके साथ किया गया है, यानी फेल इस पर वाके हुआ है। अगर ये जैद ना होता तो ये जरब का फेल हो ही नहीं सकता था भाई, जरब के लिए हमेशा मजरूब चाहिए, बगैर मजरूब के जरब का फेल हो ही नहीं सकता। शुर्ब के लिए हमेशा मशरूब चाहिए, शुर्ब का फेल बगैर मशरूब के हो ही नहीं सकता। अकल के लिए हमेशा माकूल चाहिए भाई, जब तक कोई खाई जाने वाली चीज नहीं होगी अकल यानी खाने का फेल नहीं हो सकता भाई। तो मालूम हुआ जरब तो जैदन, ये जैदन क्या है, मफूल भी ही है भाई, मफूल भी ही है, और माकबल में ये जो फेल है ये इसके साथ किया गया है। यूं कहो माकबल वाला फेल इसके सबब से किया गया है। तवज्जो है, बासबबिया मैं बना रहा हूं, पहले मैंने बा को इल्साक के लिए बनाया कि इस फेल को इसके साथ किया गया है यानी इस पर वाके हुआ है, अब मैं बा को सबबियत वाला बनाता हूं, इस फेल को किया गया है इसके सबब से, इसकी वजह से। ये जैद था तो ये वाली जर्ब भी हुई, अगर जैद ना होता तो ये वाली जर्ब भी नहीं हो सकती थी। मालूम हुआ जर्ब का फेल इस मफूल बिही यानी इस जैद की वजह से, इसके सबब से हुआ है, यह ना होता तो यह फेल नहीं हो सकता था। बात समझ में आ गई। तो अल मफूल बिही किस माना में है, अल्लज़ी फुइला बिही, और इसका क्या माना है, वो चीज के जिसकी वजह से फेल किया जाए या वो चीज जिसके साथ फेल किया जाए। तो अल्लज़ी फुइला बिही यहां जमीर किसको राजे की, अल्लज़ी को, ये हमने खोल लिया था, असल में था अल मफूल बिही, फिर हमने खोलकर क्या बना लिया, अल्लज़ी फुइला बिही बना लिया। तो अल्लज़ी फुइला बिही में हा जमीर किसको राजे, अल्लज़ी को राजे, और अल मफूल बिही में अब आ जाओ, अल मफूल बिही में बिल्कुल वही तरकीब है जो अल्लज़ी फुइला बिही में की गई। कैसे तरकीब होगी, अल मफूल बिही अलिफ लाम, इसमें मौसूल मफूल, ये जो इसमें मफूल का सीगा है ये इसका सिला, और इसमें मफूल के लिए क्या चाहिए, नाइब फाइल चाहिए, तो आगे बिही जो जार मजरूर है ये इसका नाइबुल फाइल है, और बिही की हा जमीर किसको लौटाएंगे, अलिफ लाम को, क्योंकि यह है इसमें मौसूल। बात समझ भी आई कि नहीं, अल मफूल बिही ये वही अल्लज़ी फुइला बिही है भाई, और अल्लज़ी फुइला बिही में हा जमीर किसको लौटाई थी, अल्लज़ी को, तो अल मफूल बिही में हा जमीर किसको लौटाओ, अलिफ लाम को, क्योंकि यह इसमें मौसूल है, और फुइला के लिए नायबुल फाइल किसको बनाया था, बिही को, तो मफूल जो इसमें मफूल का सीगा आया इसके लिए भी नायबुल फाइल चाहिए, तो किसको बनाएंगे, उसी बिही को बनाएंगे। तो अल मफूल बिही क्या माना, वो चीज जिसकी वजह से फेल को किया जाए, या यूं कहें वो चीज जिसके जरिए से फेल को किया जाए, तो ये बिही क्या है? नायबुल फाइल है भाई इस मफरूल के सीगे के लिए। दूसरा लफ्ज ले आए अल मफरूल फीही, अल मफरूल फीही, इसको जरा खोलें। अल मफरूल किस माना में? अल्लदी फुइला के माना में, और फीही को उसी तरह साथ ले आओ, अल्लदी फुइला फीही, अल्लदी वो चीज, फुइला के फेल को किया गया, फीही उसमें, यानी वो जमाना या मकान जिसमें फेल को किया गया भाई। तो अल मफरूल फीही, अब इसकी तरकीब करें, अलिफ लाम इसमें मौसूल, मफरूल इसमें मफरूल है, ये सिला है किसका? अलिफ लाम का, अलिफ लाम का। और ये इसके लिए नायबुल फाइल चाहिए, वो क्या है? फी ही, जो आगे जार मजरूर आ रहा है। अल मफूल फी ही ये किस माना में है? अल्लदी फुइला फी ही, और अल्लदी फुइला फी ही के अंदर फी ही नायबुल फाइल था फुइला के लिए, तो मफूल के लिए भी ये फी ही क्या है? नायबुल फाइल है। बात समझ में आ गई? तर्जमा कीजिए, अल मफूल फी ही वही अल्लदी फुइला फी ही के साथ तर्जमा करो, अल मफूल फी ही वो चीज के फेल को किया गया, फी ही उसमें, यानी वो जमाना या मकान जिसमें फेल को किया गया। मालूम हुआ इस अल मफूल फी ही के अंदर ये फी ही भी क्या है? नायबुल फाइल है इसमें मफूल के लिए। और हाज अमीर किसको राजे है? अलिफ लाम को राजे है भाई। अब आइए अल मफूल लहू, ये अल मफूल लहू किस माना में है? अल्लज़ी फुइला लहू, तर्जमा कीजिए, अल्लदी वो चीज के, फुइला फेल को किया गया, लहू उसकी वजह से। और ये फुइला के लिए नाइब फाइल यही लहू है, इजार मजरूर। और ये हाज अमीर किसको राजे है? अल्लजी को राजे है। बात समझ में आ गई? तो अल मफूलु लहू, अब इसकी तरकीब कीजिए, अलिफ लाम इसमें मौसूल, और मफूल ये इसमें मफूल है, ये सिला बनेगा किसके लिए? इसमें मौसूल अलिफ लाम के लिए। और लहू ये जार मजरूर, ये नायबुल फाइल है, और ये हाज अमीर किसको राजे? ये अलिफ लाम को राजे है। तर्जमा कीजिए अल मफूल लहू वो चीज जिसकी वजह से फेल को किया गया। बात समझ में आ गई? मालूम हुआ अल मफूल बिही, इसके अंदर ये बिही नायबुल फाइल है। अल मफूल फी ही, इसके अंदर ये फी ही नायबुल फाइल है। अल मफूल लहू, इसके अंदर ये लहू नायबुल फाइल है। और इन सब के अंदर ये जो जमीरें हैं, ये जो गायब की जमीर मजरूर है, ये लौट रही है अलिफ लाम को। तो ये जमीरें लौट रही हैं अलिफ लाम को। अब आगे आपको साहिबे जामी बतलाएंगे कि अल मफूलु माहू की भी यही तरकीब है। यानी जैसे अल मफूलु बिही और फी ही और लहू के अंदर ये जो जार मजरूर थे ये नायबुल फाइल बन रहे थे, तो अल मफूलु माहू इसके अंदर ये माहू जो है, ये याद रखो ये मा है मुजाफ और हाज अमीर है मुजाफुन इले, ये जार मजरूर तो नहीं, ये मुजाफ मुजाफिले हैं, लेकिन ये भी नायबुल फाइल बनेंगे जैसे बिही फी ही और लहू नायबुल फाइल थे। तो अल मफूलु माहू, जरा इसको खोल लें, अल्लदी फुइला माहू, अल्लदी फुइला माहू वो चीज, फुइला के फेल को किया गया, माहू उसके साथ। तो ये माहू क्या बनेगा? नायबुल फाइल किसके लिए? फुइला फेल के लिए। और हाज अमीर किसको राजे है? अल्लजी को। अब फिर इसको जोड़ लें, अल मफूल माहू, इसकी क्या तरकीब? अलिफ लाम इसमें मौसूल, मफूल सीगा इसमें मफूल, और माहू ये मुजाफ मुजाफिले मिलकर इसके लिए नायबुल फाइल, और हाज अमीर किसको राजे? अलिफ लाम को। तो इसमें मफूल अपने नायबुल फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर ये सिला हुआ अलिफ लाम के लिए। तो यही अब बयान करेंगे, किताब पर देखिए। तो कहते हैं फकौलुहु माहू मफूलु मालम युसम्मा फाइलुहू, तो मातिन का कौल जो है माहू मफूलु मालम युसम्मा फाइलुहू, कहते हैं ये मफूल मालम युसम्मा फाइलुहू है, यानी नायबुल फाइल है। माहू क्या है? नायबुल फाइल है। उस्नीदा इलैहिल मफूलु, इसकी तरफ मफूल के सीगे का इस्नाद हुआ है। तवज्जो है, अल मफूलु माहू, ये माहू नायबुल फाइल है किसके लिए? ये जो मफूल का सीगा है, तो कहते हैं उस्नीदा इलैहिल मफूल, इसकी तरफ जो है ये मफूल के लफ्ज का इस्नाद किया गया है। कमा उस्नीदा इलल जारी वल मजरूरी फील मफूल बिही वफीही वलहू, जैसे कि जार मजरूर की तरफ इस्नाद किया गया है मफूल बिही फीही और लहू में। व जमीरुल मजरूरु राजिउन इलल लामी, भाई अल मफूल माहू मा मुजाफ हा जमीर मुजाफुन इलै मजरूर है, और यह हा जमीर किसको राजे अलिफ लाम को, वही बयान कर रहे हैं। कहते हैं वज़मीरुल मजरूरु राजिउन इलल लामी, और माहू की जो जमीर मजरूर है वो लौट रही है अलिफ लाम की तरफ। वातु जिरा अन नस्बिही, यहां से अब एतराज का जवाब देंगे। एतराज यह होता है कि आपने हमें क्या बताया कि यह माहू नायबुल फाइल है, और नायबुल फाइल तो मरफू होता है, और माहू देखो मा ये तो मनसूब है, नायबुल फाइल तो मरफू होता है और ये मा तो मनसूब है। याद रखना ये जो मा है ना मा, ये मुअरब है, ये मुअरब है, और ये कलाम के अंदर कभी ज़र्फ वाक़े होता है और कभी हाल बनता है। कभी कलाम में ये ज़र्फ यानी मफूल फी बनता है और कभी ये हाल बनता है, और मफूल फी भी मनसूब होता है और हाल भी मनसूब होता है। तो ये मा अक्सर अक्सर मनसूब ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि या तो ये ज़र्फ बनेगा या हाल बनेगा। तो ये मुअरब है भाई, मुअरब। और पता कैसे चलेगा कि ये मुअरब है, याद रखो ये जो मा है ये इजाफत के साथ भी इस्तेमाल होता है और कभी बगैर इजाफत के भी इस्तेमाल होता है। देखो माहू मा मुजाफ हा जमीर मुजाफुन इले, यहां इजाफत के साथ है। आप जरा इसकी इजाफत खत्म कर दें तो क्या बन जाएगा, मान जा जैदुन व अमरुन मान, जैद और अमर इकट्ठे आए, ये मान ये यही मा है। देखो आपने इजाफत खत्म की तो इस पर तनवीन आ गई, मालूम हुआ ये मुअरब है। अगर ये मबनी होता तो मबनी पर तो तनवीन नहीं आती भाई, तो ये मुअरब है भाई। तो जब ये मुअरब है और आपने इसको नायबुल फाइल करार दे दिया है तो फिर तो इस पर रफा आना चाहिए। तो उसका जवाब देंगे, उसका जवाब देंगे कि ऐसा लफ्ज जो अक्सर मंसूब इस्तेमाल होता हो, अक्सर मंसूब इस्तेमाल होता हो, तो बाज नहवी हजरात ने ये उजर पेश फरमाया है कि ऐसा लफ्ज जो अक्सर मंसूब इस्तेमाल होता हो उसकी तरफ जब फेल का इस्नाद किया जाए तो उसको मंसूब ही छोड़ देते हैं, यानी जिस हालत पर वो अक्सर होता है उसी हालत पर उसको बरकरार रखते हैं। और ये मा अक्सर किस हाल पर होता है, मंसूब होता है, तो लिहाजा इसको इसी हाल पर छोड़ दिया जाएगा। मा अक्सर ज़र्फ इस्तेमाल होता है या हाल, ज़र्फ भी मंसूब हाल भी मंसूब, तो जब इसकी तरफ फेल का इस्नाद किया गया तो इस पर रफा आना चाहिए, लेकिन इस पर उसी नसब को चलने दिया गया, क्योंकि इस पर अक्सर क्या आता है, नसब आता है, तो उसी को बाकी रखा गया। तो अगरचे ये नायबुल फाइल है लेकिन इसको इसी वजह से मंसूब छोड़ दिया गया, क्योंकि अक्सर किस तरह इस्तेमाल होता है, नसब के साथ। जी अब देखिए भाई किताब पर, कहते हैं वातु जिरा अन नस्बिही, और उजर पेश किया गया इस मा के नसब से, बीमा जव वजह बाजुन नुहाती, वो जो जायज करार दिया है बाज नहवियों ने, मा से मुराद है जाब्ता और कानून। वातु जिरा अन नस्बिही, और उजर पेश किया गया इस माहू के नसब से, बीमा जव वजह बाजुन नुहाती, उस जाब्ते से कि जायज करार दिया है बाज नहवियों ने, वो जो जाब्ता है कि जायज करार दिया है बाज नहवियों ने, भाई वो कौन सा जाब्ता है, बात अभी भी पूरी तरह वाजह नहीं, तो आगे फिर बयान चाहिए, तो मीन के साथ बयान कर रहे हैं, तो ये मीन बयान है मां का, और मां से क्या मुराद है, कानून और जाब्ता, कि उस जाब्ते की वजह से वो जो बाज नहवियों ने जायज करार दिया है, वो जाब्ता क्या है, कहते मीन इसनाद इल फिअली इला लाजिम इन नस्बी, यानी कि फेल का इसनाद करना लाजिम उन नस्ब की तरफ, यानी ऐसा इसम जिसके साथ नस्ब लाजिम हो। यह मा भी जो है अक्सर अक्सर किस तरह इस्तेमाल होता है, नसब के साथ, तो गोया इसके साथ नसब लाजिम ही है भाई। तो कहते हैं कि मिन इसनाद इल फिअली इला लाजिम इन नस्बी, यानी वो जो फेल का इसनाद किया जाए किसी लाजिम उन नसब की तरफ, व तर्की ही मनसूबन, और उसको मनसूब ही छोड़ दिया जाए, जरियन अलामा, चलते हुए उसी नसब पर, मा से मुराद है नसब, और हुआ हुआ जमीर राजे है लाजिम उन नसब को, अलामा उसी नसब पर चलते हुए हुआ अलैही जिस पर वो लाजिमुन नसब था, जिस पर वो लाजिमुन नसब था, फिल अक्सरी अक्सर अहवाल के अंदर भाई। फिर तर्जमा देखिए कहते हैं वा तुजीरा अन्नस भी बीमा जाऊ वजहू बाजुन नुहाती और उजर पेश किया गया है इस माहू के नसब से उस कायदे के जरिए उस जाब्ते के जरिए के जायज करार दिया है बाज नहवियों ने मिन इसनाद अल-फ़िअली इला लाज़िमिन नस्ब व तर्किही मनसूबन यानी फेल का इसनाद करना लाजिमुन नसब की तरफ और इसको मनसूब ही छोड़ देना जरियन अलामा हुआ अलैही फिल अक्सर चलते हुए उसी नसब पर जो उस लाजिमुन नसब पर अक्सर होता है उस पर चलते हुए फेल का इसनाद जब लाजिमुन नसब की तरफ किया जाता है तो उसको उसी तरह मंसूब छोड़ दिया जाता है उसकी उस हालत पर जिस पर वो अक्सर होता है। वह इलैही ज़ुहिबा फी क़ौलिही तआला और इसी की तरफ जाया गया है अल्लाह ताला के इस कौल में भी यानी इसी की तरफ ज़हाब किया गया है अल्लाह ताला के इस कौल में भी लक़द तक़त्तअ बैनकुम अला क़िरातिन नस्बी लक़द तक़त्तअ बै इसके आगे जो बैनकुम है याद रखो ये बैनकुम मुजाफ मुजाफिले मिलकर ये फाइल है तकत्ता का, ये फाइल है तकत्ता का और बास की रातों में तो ये मंसूब है और बास के अंदर बाकायदा इस पर रफा आया है लकत तकत्ता बैनकुम बै रफा आया मालूम हुआ ये क्या बन रहा है फाइल बन रहा है लेकिन बास की रातों में तो नसब ही है तो चाहे रफा वाली किरात है चाहे नसब वाली किरात है दोनों के अंदर ये फाइल तो जिन्होंने रफा पढ़ा उन पर तो कोई इश्काल नहीं लेकिन जिन्होंने नसब पढ़ा उन पर एतराज होता है कि ये तो फाइल है फिर इस पर नसब क्यों है तो वही जवाब जो अभी जिक्र हो गया वही उजर यहां भी पेश किया जाता है कि बैना जो है लाजिमुन नसब है यह हमेशा नसब के साथ इस्तेमाल होता है तो लिहाजा जब इसकी तरफ फेल का इस्नाद किया गया तो इसको उसी तरह मंसूब छोड़ दिया गया इसके उन अहवाल पर चलते हुए जो इसमें अक्सर होते हैं यानी अक्सर यह मंसूब होता है तो इसको मंसूब ही छोड़ दिया गया लेकिन है यह फाइल ही। बात समझ में आ गई तो कहते हैं लकत तौकत ता बैनकुम अला क़िरातिन नस्ब बिनाबर नसब वाली क़िरात के भाई उस पर इश्काल होता है ना भाई रफा वाली क़िरात में तो वो रफा चाहिए और रफा उस पर आ रहा है एतराज सिर्फ किस पर होता है नसब वाली क़िरात पर तो उसमें भी यही जवाब दिया तो लकत तौकत ता का माना है तहकीक कतई ताल्लुक हो गया तुम्हारे दरमियान मुशरिकीन से कहा जाएगा क्यामत के दिन मुशरिकीन आएंगे और साथ वो चीजें जिनको वो अल्लाह का शरीक बनाते थे वो उनके साथ नहीं होंगी तो उनसे क्या कहा जाएगा कि तुम्हारे वो शरीक कहां है लकद तकत्ता बैनकुम तुम्हारे दरमियान कतई ताल्लुक हो चुका है। तो कहते हैं वह इलैही ज़ुहिबा फी क़ौलिही तआला और इसी एतज़ार की तरफ जाया गया है यानी यही उज़र पेश किया गया है अल्लाह ताला के इस कौल में भी लक़द तक़त्तअ बैनकुम अला क़िरातिन नस्ब किस क़िरात पर नसब वाली क़िरात पर कि यहां नसब इसलिए छोड़ दिया गया। वफी बाज़िल हवाशी और कहते हैं बाज़ हवाशी के अंदर यह बात दर्ज है कि अन्न हाज़र रायु शरीफ़ुन जिद्दन कि यह राय बड़ी शरीफ यानी बड़े शरफ वाली है। उर्दू वाला शरीफ नहीं भाई, उर्दू में तो शरीफ कहते हैं जो सीधा सादा आदमी हो शरीफ, यहां शरीफ शरफ से है, शरफ यानी ऊंचे दर्जे वाली, ये बड़े ऊंचे दर्जे वाली राय है यानी बड़ी आला राय है। कौन सी राय? ये जो माहू को नाइबुल फाइल करार दिया गया अल मफूल माहू, इसके अंदर यह माहू को नाइबुल फाइल जो करार दिया गया है यह बड़ी आला राय है। भाई आला राय किस तरह है? कहते हैं भाई एक तो इसकी मुआफकत हो गई कुरान के साथ, कुरान के अंदर भी बैनकुम फाइल है और इसको मंसूब ही छोड़ दिया गया और अल मफूल माहू में भी माहू नाइबुल फाइल है और इसको मंसूब ही छोड़ दिया गया तो कुरान के साथ भी इसकी मुआफकत हो गई जब इसको नाइबुल फाइल करार दें और नीज मफूल भी ही मफूल फी और मफूल लहू के साथ भी इसकी मुआफकत हो गई उनमें भी ये जो बिही फीही और लहू हैं वो क्या हैं नाइबुल फाइल और यहां पर भी क्या कहा कि ये माहू नाइबुल फाइल है। तो कहते हैं वफी बाज़िल हवाशी अन्न हादर राय शरीफ़ुन जिद्दन और बाज़ हवाशी में है कि ये राय जो है बड़ी ऊंची है बड़ी आला है कि जो इस माहू को नाइबुल फाइल करार दिया गया। वकीला और कहा गया है, ये दूसरी तौजीह कर रहे हैं भाई। वकील अल वजहू और कहा गया है वजह यह है, यानी इसकी तरकीब में कि अयुज आला मिन कबीली, कि इसको इस कबील से बना दिया जाए। वकद हीला बैन अल आयरी वन नजवान, हीला हाल यहूलू हैलूला का माना है हाइल होना, रुकावट डालना, उसी से हीला फिल मजहूल लाया गया। बैन अल आयरी, आयर कहते हैं गधे को भाई, और ज्यादातर इसका इतलाक होता है जंगली गधे पर भाई। और नजवान, नजवान का माना है फुर्ती दिखाना, तेजी दिखाना और इसी तरह छलांग लगाना। तो माना क्या है, हीला बैनल आयरी वन नजवानी, रुकावट डाल दी गई जंगली गधे और उसकी छलांग के दरमियान। यूं कहो जंगली गधे और उसकी फुर्ती और तेजी के दरमियान रुकावट डाल दी गई। ये जरबुल मसल बन चुका है भाई, ये दरअसल मिसरा है एक शेर का, एक शायर ने कहा था, कोई शायर था किसी जंग में वो जख्मी हो गया या किसी ने जख्मी कर दिया, शदीद जख्मी हो गया और बड़े लंबे अरसे तक वो बिस्तर पर पड़ा रहा, एक साल या इससे भी ज्यादा अरसे तक। तो घर वाले भी इतना तवील बीमार हो, खिदमत कर करके थक जाते हैं, तो एक दिन उसकी बीवी ने उसके सामने ही किसी से कह दिया, ला हय्युन फयुर्जा वला मैतुन फयुल्का, ला हय्युन फयुर्जा, ना तो ये जिंदा है कि इससे किसी चीज की उम्मीद की जाए, वला मैतुन फयुल्का, और ना ये मुर्दा है कि इसको कब्र में डाल दिया जाए। तो इसको बीवी की ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा चढ़ा और इसने इरादा किया कि उठूं, तलवार उठाऊं और बीवी को कत्ल कर दूं, लेकिन इतना कमजोर हो चुका था कि कमजोरी की वजह से अपने इस इरादे पर अमल न कर सका कि उठे, तलवार उठाए और बीवी को क्या कर दे, कत्ल कर दे। वो उठना ही उसके लिए मुश्किल था, कहां तलवार उठाता और उसको कत्ल करता, तो लिहाजा वो अपने इस इरादे को पूरा न कर सका। तो उस मौका पर उसने शेर कहा और उसका एक मिसरा यह है, वकद हीला बैन अल आयरी वन नजवान, कि मैंने तो बीवी को कत्ल करने का इरादा किया था लेकिन जंगली गधे और उसकी छलांग के दरमियान, उसकी फुर्ती के दरमियान रुकावट डाल दी गई। तो यह जरबुल मसल बन चुका है, जब कोई ताकतवर आदमी हो और किसी मामले में वो आजीज आ जाए, उस चीज को वो कर ना सके, तो उस वक्त कहते हैं कि वकद हीला बैनल आयरी व नजवान। तो अब इसके अंदर देखो, वकद हीला बैनल आयरी व नजवान, यहां हीला फेले मजहूल आया और फेले मजहूल के लिए क्या चाहिए, नायबुल फाइल चाहिए। तो ये नायबुल फाइल क्या है, किसको बनाए, नायबुल फाइल का पता नहीं चल रहा। और पीछे क्या आया था, पहले जो हमने तरकीब की, अल मफूल बिही वफीही वलहू, उनको हमने क्या बनाया था, नायबुल फाइल। क्यों बनाया था, क्योंकि वो जार मजरूर थे और मजरूर भी दरअसल क्या होता है, मफूल बिही गैर सरीह होता है, और फेले मजहूल लाया जाए तो मफूल बिही को क्या बनाते हैं, नायबुल फाइल। तो इसलिए वहां पर वो जार मजरूर को नायबुल फाइल करार दिया गया था, क्योंकि वो मफूल बिही गैर सरीह था, और यहां तो कोई जार मजरूर भी नहीं है। हीला बैन अल आयरी वन नजवानी, ये तो आगे जर्फ आ रहा है। तो फिर इसके अंदर बाज़ उलमाए नहव जो है वो और तावील करते हैं, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि बाज़ औकात किसी फेल के फाइल या नायबुल फाइल का पता न चले तो फिर उस फेल के अंदर जमीर उसी के मस्दर को लौटा देते हैं, उसी के मस्दर को लौटा देते हैं। मसलन फुइला फेल आया किसी जगह पर और उसके नायबुल फाइल का पता नहीं चल रहा, तो फिर फुइला के अंदर ही हुआ जमीर इसके मस्दर को लौटा देंगे। फुइला हुआ और ये हुआ जमीर किसको राजे, इसी के मस्दर को, इसी फुइला के मस्दर को। और फुइला का मस्दर क्या, फेलुन, फेलुन। तो पहले क्या था, फुइला हुआ, हुआ की जगह मस्दर को ही ले आओ ताकि बात वाजे हो जाए, फुइला फेलुन, फुइला फेलुन। और फिर याद रखो इसका तर्जमा कैसे करते हैं, तर्जमा यूं करते हैं, देखो क्या बन गया, पहले क्या था, फुइला, फिर इसके अंदर जमीर निकाली किसको राजे की, इसी के मस्दर को, फिर जमीर की जगह उस मस्दर ही को ले आए बात समझाने के लिए कि ये क्या है, फुइला फेलुन है भाई। और फिर ये जो फुइला फेल है इसको बदल देते हैं, आगे फेलुन मस्दर को उसी तरह रखते हैं, ये फुइला फेल को बदलते हैं और इसकी जगह यकाऊ या वका या हसला वगैरह कोई फेल मौके के मुताबिक ले आते हैं। तो फुइला फेलुन किस माना में हुआ, वकाआ फेलुन फेल हुआ, या हसला फेलुन फेल हुआ, या सबता फेलुन फेल हुआ, माना सबका एक ही है। तो फुइला फेलुन का क्या माना, वकाआ फेलुन या हसला फेलुन, फेल हासिल हुआ यानी फेल हुआ। बात समझ में आ गई। तो यहां पर हीला आया भाई, और ये हीला फेले मजहूल है और इसके नाइब फाइल का पता नहीं चल रहा, और आगे कोई जार मजरूर भी नहीं है कि उसको इसका नाइबुल फाइल बना दें। तो फिर कहते हैं इसी के अंदर जमीर निकालो और इसके मस्तर को लौटा दो। हीला हुआ, हीला हुआ बैनल गैर व नजवान, और हुआ जमीर किसको राजे, इसी के मस्तर को। तो हुआ को जरा हटा दो, इसी के मस्तर को ले आओ। हीलल हैलूलतु, इसका मस्तर हैलूला है, हाल यहूलु हैलूलतन। तो हीलल हैलूलतु बैनल गैरी व नजवानी। और फिर मैंने तर्जमा करने का तरीका भी बतलाया कि वो फेल को बदल दो वका या सबता या हसला से। तो हीलल हैलूलतु, तो हीला को हटाएं और वकाअ ले आए। अई वकाअल हैलूलतु, हैलूला वाके हुआ, रुकावट वाके हो गई, बैनल गैरी व नजवानी, जंगली गधे और उसकी छलांग में या उसकी फुर्ती में। देखो माना बेहतरीन हो गया। तो मालूम हुआ बाज नहवी हजरात क्या फरमाते हैं कि फेल मजहूल के नाई फाइल का पता ना चले तो उसके अंदर जमीर उसी के मस्तर को लौटा दो। बात समझ में आ गई। देखिए भाई कहते हैं वकीला, और कहा गया है, देखो इस दूसरे कौल को कीला के साथ जिक्र कर रहे हैं, और पहली राय जो थी कि माहू इसको क्या बना दो, नाइबुल फाइल, उसको आला राय करार दिया, और दूसरे को कीला के साथ जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बाज नहवी इससे इख्तिलाफ करते हैं। कीला सीगे तमरीज है, इसके साथ कमजोर कौल को नकल किया जाता है। तो कहते हैं वकीला, और कहा गया है अलवजह, कि इसकी तरकीब में वजह यह है कि अयु जाला मिन कबील, के इसको बना दिया जाए इस कबील से। वकद हीला बैन अल गैरी व नजवानी फ इन मफूल मा लम युसम्मा फाइलुहु फीहि ज़मीरु राजिउ इला मस्दरिही, इसलिए क्योंकि मफूल मा लम युसम्मा फाइलुहु जो है फीहि, वो इस हीला के अंदर जो है, ये जो हीला का फेल आया इसके अंदर जो है मफूल मा लम युसम्मा फाइलुहु जो है अज़मीरु राजिउ इला मस्दरिही, वो जमीर है जो लौट रही है इसके मस्दर को। ऐ हीलल हैलूलतु, देखो यह है तकदीर इबारत, लिअन्न बैना, भाई सवाल कि हीला के अंदर जमीर इसी के मस्तर को राजे की, यह बैना आगे आ रहा है, इसको नाइबुल फाइल क्यों नहीं बनाया। तो ये उलमाए नहव जिन्होंने जमीर मस्तर को राजे की है वो फरमाते हैं कि यह बैना लाजिमु जरफियत है, यह हमेशा जर्फ ही बनता है, इसने मफूल फी ही बनना है, इसने जर्फ बनना है और इसने मनसूब रहना है, यह लाजिमुन नसब है, इसके साथ नसब लाजिम है, तो लिहाजा इसलिए इसको नाइबुल फाइल नहीं बना सकते। तो हीला के अंदर जमीर उसी के मस्तर को लौटाकर उस जमीर को नाइबुल फाइल बनाएंगे। तो कहते हैं लिअन्ना बैना लिलुजूमी जरफियति ही, इसलिए क्योंकि बैना जो है लिलुजूमी जरफियति ही, अपनी जरफियत के लाजिम होने की वजह से, ला युकामु मकाम अल्फाइली, ये फाइल के कायम मकाम नहीं हो सकता, फाला हादा, तो बिना बर इस तौजीह के यकूनु माना हो, माना यह हो जाएगा अल्लदी फुइला फिअलुम बि मुसाहबतिही। देखो वही इबारत लिया है जो ऊपर थी, अल मफूलु माहु अयल्लदी फुइला बि मुसाहबतिही, तवज्जो है। तो वहां पर देखो सिर्फ फुइला जिक्र था, अब यहां क्या कहा, अल्लदी फुइला फिअलुम बि मुसाहबतिही, यानी फुइला की जमीर किसको लौटा दी, इसी के मस्तर को लौटा दी। तो तकदीर इबारत क्या बन गई, अल्लदी फुइला फिअलुम बि मुसाहबतिही, यानी मफूल माहु वो चीज है फुइला फिअलुन, कि फेल को किया जाए बे मुसाहबत ही, उसकी मुसाहबत में भाई। और ये भी याद रखना भाई कि ये जो हीला बैनल गैरी व नजवानी, इसके अंदर वो जो पहली तौजीह जिक्र की वो भी जारी हो सकती है कि इसी बैनल गैरी व नजवान को क्या बना दिया जाए, हीला के लिए नाइबुल फाइल बना दिया जाए। फिर सवाल पैदा होता है कि बैना पर नसब क्यों है, तो जवाब वही जो पीछे गुजर गया कि चूंकि बैना जो है लाजिमुन नसब है, लिहाजा इसको नाइबुल फाइल बनाने के बावजूद उसी नसब पर छोड़ दिया गया जिस नसब पर यह अक्सर होता है। बात समझ में आ गई। फाला हादा, तो इस तौजीह की बिना पर यह जो दूसरी तौजीह है, यकूनु मानाहू, मफूलु माहू का माना क्या होगा, वो जो ऊपर मतन में आया था अल मफूलो माहू, इस तौजीह की बुनियाद पर इसका माना क्या होगा, अल्लदी फुइला फिअलुन बि मुसाहबतिही, अल्लदी फुइला फिअलुन, वो चीज के फेल को किया गया, या फोइला की जगह वका ले आओ, वो चीज के वका फेल उनके फेल वाक हुआ भी मुसाहबत ही उसके मुसाहबत के साथ। बात समझ में आ गई। तो ये माना होगा अला अन यकून मफूल मालम युसम्मा फाइलुहु जमीरन राजिअन इला मस्दरिही, बिना बर इसके के मफूल मालम युसम्मा फाइलुहु जो है जमीरन ऐसी जमीर है, राजिअन इला मस्दरिही जो लौट रही है इसी के मस्दर की तरफ। भाई देखिए अल मफूल माहू दूसरी तौजीह जिक्र कर रहे हैं। दूसरी तौजीह के मुताबिक पहली तौजीह क्या थी कि ये माहू इसी को नायबुल फाइल बना दो। दूसरी तौजीह क्या है कि माहू ये तो लाजिमुन नसब है, लाजिमुन ज़र्फियत है, लिहाजा ये नायबुल फाइल नहीं बन सकता, तो मफूल के अंदर नायबुल फाइल की जमीर निकाल लो, और वो मफूल के अंदर जो नायबुल फाइल की जमीर है किसको लौटा दो, उसी के मस्तर को, उसी के मस्तर को लौटा दो, और ये माहू की हा जमीर किसको लौटाओ, अलिफ्लाम को लौटाओ, यह रबत दे रही है। तरकीब समझ में आई। तो यह माना है अला अन यकूना बिना बर इसके के मफूल मालम युसम्मा फाइलुहू कि इसका मफूल मालम युसम्मा फाइलुहू जो है जमीरन ऐसी जमीर है, राजिअन इला मस्दरिही जो लौट रही है इसी के मस्दर की तरफ, व जमीरुल मजरूर लिल मौसूल और वो जमीर जो मजरूर है वो मौसूल के लिए है। अल मफूल माहू अल मफूल के अंदर जमीर निकाल ले हुआ वो क्या है नाई फाइल किसको लौट रही है मस्दर को, तो वो हुआ जमीर वो तो मरफू है, और अल मफूल माहू ये हा जमीर क्या है मजरूर है, ये हा जमीर ये अलिफ्लाम को लौट रही है, यही बयान कर रहे हैं। वह जमीरुल मजरूर लिल मौसूल के वो जमीर जो मजरूर है वो इसमें मौसूल के लिए है यानी उसकी तरफ लौट रही है। बात समझ में आ गई, हल हो गया। दो तरकीबें इन्होंने बता दी कि आप माहू को भी नायबुल फाइल बना सकते हैं, और एक सूरत यह है कि आप इसको जर्फ ही रहने दें, अलबत्ता ये जो मफूल के अंदर हुआ जमीर निकाल लें वो नायबुल फाइल है जो इसी के मस्तर को यानी फ़िअल को लौट जाएगी। बात समझ में आ गई। हुआ मजकूर उन बादल वावी ये मफूल माहू वो है जो मजकूर होता है वाव के बाद, किसके बाद मजकूर होता है वाव के बाद, एहतराज उन अनिल मजकूर इबादा गैरी ही तो इस कैद के जरिए एहतराज किया उससे जो मजकूर हो वाव के अलावा के बाद। साहिब जामी फरमा रहे एहतराज उन अनिल मजकूर इबादा गैरी ही कि ये जो वाव के बाद मजकूर होने की कैद लगाई इसके जरिए दरअसल एहतराज है जो वाव के अलावा के बाद वाके हो, यानी वाव के अलावा यानी फा वगैरह के बाद जो वाके होगा वो मफूल माहू नहीं हो सकता। मफूल माहू हमेशा किसके बाद आएगा वाव के बाद आएगा। तो कहते हैं एहतराज उन अनिल मजकूर इबादा गैरी कलफाई, कहते हैं इस कैद के जरिए एहतराज किया उस इसम से जो मजकूर हो वाव के अलावा के बाद, जैसे कि फा वगैरह हैं, लि मुसाहबत ही मामूल फ़िअलिन, लि मुसाहबत ही याद रखना ये मुसाहबत मस्तर है और मस्तर भी अपने फेल जैसा अमल करता है, और ये हाज अमीर ये मफूल माहू को राजे है, वो मुसाहबत कौन करता है मफूल माहू करता है, तो यह है फाइल मुसाहबत करने वाला, और किसके मुसाहबत करता है मामूला फ़िअलिन, यह मनसूब है यह मफूल भी ही है मुसाहबत के लिए, मुसाहबत ही मामूला फ़िअलिन इस वजह से कि वह मफूल माहू मुसाहिब होता है मामूल फेल का। भाई लि मुसाहबत ही में लाम आया तो यह लाम किससे मुतालिक है, जार मजरूर किससे मुतालिक है, तो आपको बतलाएंगे कि ये जो हुआ मजकूरन ये जो इसमें मफूल का सीगा आया मजकूरन ये उसके साथ मुतालिक है, ले मुसाहबत ही इसको जोड़े मजकूरन से, मफूल माहू मजकूर होता है वाव के बाद, मफूल माहू वाव के बाद जिक्र किया जाता है ले मुसाहबत ही इस वजह से कि वो मुसाहिब होता है मामूले फेल का। तो ये लाम याद रखो तालील के लिए है, लाम अजलिया है इल्लत बयान करने के लिए है। तो कहते हैं अल्लाम मुतअल्लिकुम बिमस्कूरिन, ये लाम जो है मस्कूरुन से मुतअल्लिक है, यहां आप यूं भी पढ़ सकते हैं बिमस्कूरिन क्योंकि बाद जारा दाखिल है, और आप चाहें तो बिमस्कूरुन पढ़ें यानी एराब हिकाई क्योंकि ये लफ्ज कहां से लिया वो ऊपर मतन से हुआ मजकूरन और मतन के अंदर तो इस लफ्ज पर रफा था, तो आप भी यहां रफा पढ़ सकते हैं। इसको कहते हैं एराब हिकाई भाई, तो ये एराब हिकाई है लेकिन मसल कैसे पढ़ा, अल्लामु मुतअल्लिकुम बिमज़कूरुन, तो मज़कूरुन क्यों पढ़ा, एराब हिकाई की वजह से। अलबत्ता महल्लन ये भी मजरूर है क्योंकि बा जारा दाखिल है। तो कहते हैं अल्लामु मुतअल्लिकुम बिमज़कूरुन, ये ला मुतअल्लिक है मज़कूरुन के साथ, अय्यकूनु ज़िक्रुहु बादल वावी, यानी वो मफूल माहू को वाव के बाद जिक्र करने की वजह जो है, लिअजलि मुसाहबतिही मामूल फ़िअलिन, इस वजह से होती है कि वो मुसाहिब होता है मामूल फ़िअल का, व इफादतिही इयाहा, और इस वजह से कि वो वाव इस मुसाहबत का फायदा देता है। इसको वाव के बाद क्यों जिक्र किया जाता है कि यह मामूल फेल का मुसाहिब होता है और यह वह उस मुसाहबत का फायदा देता है। तो कहते हैं वह इफादती ही, ये इफादती ही कि हा जमीर लौटाएं वह को, और वो वह फायदा देता है इयाहा इस मुसाहबत का, सवा उनका नजालिकल मामूल फाइलन, बराबर है कि वह मामूल फाइल हो। मैंने आपको बतलाया कि वह जो मामूल फेल है जिसके मुसाहबत के लिए मफूल माहू आया है, वह मामूल फेल फाइल भी हो सकता है और मफूल भी, यानी मफूल माहू फाइल की मुसाहबत के लिए भी आता है और मफूल भी की मुसाहबत के लिए भी आता है। तो कहते हैं सवा उनका नजालिकल मामूल फाइलन, बराबर है कि वो मामूल फाइल हो, नहु मिसाल के तौर पर इस तवल माऊ वलखा शबता, ये वलखा शबता ये मफूल माहू है, इस पर नसब पढ़ना है। इस तवल मा उपानी बराबर हो गया वल खशबता ऐ माल खशबती लकड़ी के साथ, पानी बराबर हो गया लकड़ी के साथ, यानी भाई बाज औकात कुएं वगैरह में लकड़ी वगैरह लगाई जाती है पानी की मिकदार मापने के लिए, उसकी पैमाइश करने के लिए। तो किसी ने दूसरे से पूछा कि कुएं में कितना पानी हो चुका है, तो कुछ ऊंचाई पर लकड़ी मसलन लगी हुई थी दीवार के अंदर, तो वो उसको बतलाता है इस तवल मा उवल खशबता कि पानी उस लकड़ी के बराबर हो गया है, यानी उस तक पहुंच चुका है। तो अब देखो इस तवल माऊ, ये माऊ फाइल है इस तवा के लिए, और फाइल के बाद वल खशबता मफूल माहू आया, तो मफूल माहू किसका मुसाहिब हुआ, फाइल का मुसाहिब हुआ, फाइल भी फेल का मामूल होता है और मफूल भी फेल का मामूल होता है। तो कहते हैं सवा उनका नदालिकल मामूल फाइलन, बराबर है कि वो मामूल जो है फेल का वो फाइल हो, नहु इस तवल मा उवल खशबता, पानी बराबर हो गया लकड़ी के साथ, और मफूलन या फेल का वो जो मामूल है वो मफूल हो, नहु कफा का वजैदन दिरहमुन, जी ये है महल इश्काल भाई, कफा का वजैदन दिरहमुन, काफी है आपके लिए वजैदन ऐ माअज़ैदिन जैद के साथ दिरहमुन एक दिरहम, साहिब जामी ने कफा का वजैदन दिरहमुन इसको बतौर मिसाल के जिक्र फरमाया, किसकी मिसाल है कि मफूल माहू मुसाहिब है मफूल बिही का, मालूम हुआ यह वजैदन ये मफूल माहू है, मफूल माहू है, लेकिन दीगर नहवी हजरात फरमाते हैं कि नहीं ये वजैदन मफूल माहू नहीं है, ये मातूफ है, इसका आतफ कफाका की काफ जमीर पर है और काफ जमीर मफूल भी ही है, कफा फेल है, आगे दिरहमुन आ रहा है ये फाइल है कफा के लिए, काफी है, क्या चीज काफी है, दिरहम भाई, दिरहम एक दिरहम काफी है, और ये काफ जमीर जो है ये मफूल भी ही है और इस पर अतफ हुआ है जैदन का, और काफ जमीर जब मफूल भी ही है तो वो महलन मंसूब है, तो इस पर जो मातूफ होगा वो भी क्या होगा, मंसूब, तो इसलिए वह जैदन मंसूब है, तो ये जैदन मफूल भी ही होने की वजह से मंसूब है, मफूल माहू होने की वजह से मंसूब नहीं है। बात समझ में आ गई भाई, यहां दो तीन बातें याद रखें, दो तीन जाब्ते याद रखें तो फिर बात आपको समझ में आएगी। सबसे पहले तो जमीर के बारे में समझ लें, याद रखो जमीरें तीन किस्म पर हैं, कभी जमीर मरफू होती है, कभी मंसूब, कभी मजरूर। रफा वाला मकाम हो तो जमीर मरफू लाते हैं, नसब वाला मकाम हो तो जमीर मनसूब लाते हैं, और जर वाला मकाम हो तो जमीर मजरूर लाते हैं। तो जमीरें तीन किस्म पर हैं। फिर इनमें से जो जमीर मरफू है यह मुत्तसिल भी हो सकती है और मुनफसिल भी। मुत्तसिल जैसे जरब तो यह ता जमीर मुतकल्लिम की है और मुत्तसिल है, फेल के साथ जुड़ी हुई है, और मरफू है क्योंकि यह फाइल है। जरब तो में यह ता क्या है, फाइल, तो ये मरफू मुत्तसिल है। और ता से कौन मुराद है, वाहिद मुतकल्लिम, ये वाहिद मुतकल्लिम की जमीर है। और इसी तरह वाहिद मुतकल्लिम की जमीर आना भी है, आना कायमुन, ये आना क्या है, ये आना कायमुन, ये आना मुबतदा है, और मुबतदा क्या होता है, मरफू। तो ये जो आना है ये भी वाहिद मुतकल्लिम की जमीर, और ज़रबतु के अंदर जो ता है यह भी वाहिद मुतकल्लिम की जमीर, लेकिन वह ता मरफू मुत्तसिल है और आना मरफू मुनफसिल है। देखो आना किसी के साथ जुड़ने की मोहताज नहीं, तो जमीर मुत्तसिल किसी के साथ जुड़ी होगी और मुनफसिल किसी के साथ जुड़ने की मोहताज नहीं। और याद रखना कलाम के अंदर असल यह है कि जमीर मुत्तसिल लाई जाए, क्योंकि जमीर मुत्तसिल मुख्तसर होती है। ज़रबतु देखो सिर्फ ता है, और आना इसमें अलिफ भी है नून भी है, बात समझ में आ गई, तो इसमें हरूफ ज्यादा हैं और कलाम मुख्तसर होना चाहिए। तो असल क्या है, किसको इस्तेमाल किया जाए, जमीर मुत्तसिल को। लेकिन अगर कोई माने आ जाए, आप जमीर मुत्तसिल इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, फिर जमीर मुनफसिल को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अना कायमुन, अना, अब ये देखो अना वाहिद मुतकल्लिम की जमीर है, और असल क्या है, किसको इस्तेमाल करना चाहिए, मुनफसिल को या मुत्तसिल को, मुत्तसिल को। लेकिन यहां मुत्तसिल जमीर में ला ही नहीं सकता, क्योंकि मैं मुब्तदा बनाना चाहता हूं, और मुब्तदा तो अलग होता है, उसके अंदर तो इब्तिदा आमिल होती है। ज़रबतु में तो ता के अंदर ये ज़रबा आमिल है, लेकिन मुब्तदा के अंदर तो इब्तिदा आमिल होती है, तो यहां इत्तिसाल की कोई सूरत नहीं थी, तो मजबूरन मुझे मुनफसिल लाना पड़ी जमीर। तो असल क्या है, किसको इस्तेमाल किया जाए, जमीर मुत्तसिल को। लेकिन अगर मुत्तसिल से कोई माने आ जाए तो फिर जमीर मुनफसिल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जमीर मुत्तसिल मुख्तसर होती है, उसके हरूफ कम होते हैं। तो जमीर मरफू दो किस्म पर है, मुत्तसिल भी और मुनफसिल भी। इसी तरह याद रखो जमीर मनसूब जो है वो भी दो किस्म पर है, मुत्तसिल भी और मुनफसिल भी। ज़रबतुहु, यह हा जमीर देखो ज़रबतु के साथ मुत्तसिल है और यह मफ़ऊल है। ज़रबतु यह ता है फाइल, और ज़रबतुहु यह हा साथ जोड़ दी, यह क्या है, मफ़ऊल भी ही है, यह महलन मनसूब है, तो यह ज़मीर मनसूब है। ज़रबतुहु में यह ता कौन सी जमीर है, मरफू मुत्तसिल, और यह हा कौन सी है, मनसूब मुत्तसिल है, तो यह गायब की जमीर है। और गायब की जमीर मनसूब मुनफसिल क्या है, इयाहु, इयाका, इयाकुमा, इयाकुम, इयाकी, इयाकुमा, इयाकुन, इयाहु, इयाहुमा, इयाहुम, देखो जमीरें आप पढ़ चुके हैं, तो ये जमीरें मनसूब मुनफसिल है भाई। तो जमीरें मनसूब भी दो किस्म पर, एक मनसूब मुत्तसिल और एक मनसूब मुनफसिल भाई। जबकि जमीर मजरूर जो है वो सिर्फ मुत्तसिल आती है, वो मुनफसिल नहीं आती। तो जमीरें गोया पांच किस्म की हो गई, मरफू मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल, मनसूब मुत्तसिल, मनसूब मुनफसिल, और मजरूर मुत्तसिल, ये पांच किस्म की जमीरें हैं भाई। और जैसा मौका होगा उसके मुताबिक वो जमीर वहां इस्तेमाल करेंगे। ये जो जमीर मजरूर है, याद रखो जमीर मजरूर ये सिर्फ मुत्तसिल होती है, और जर की दो ही सूरतें आप जानते हैं, मजरूर दो ही चीजें होती हैं, एक जिस पर हर्फ जर दाखिल हो जाए, और एक जो मुजाफुन इलह होता है, मुजाफुन इलह, वो भी मजरूर। तो ये जमीर मजरूर मुत्तसिल, इस पर भी कभी हर्फ जर आएगा, जैसे लका या लहू, ये लाम जारा और आगे काफ जमीर मजरूर। और कभी जमीर मजरूर होगी मुजाफिले होने की वजह से, किताबू का, किताब मुजाफ, काफ जमीर मुजाफुन इलह। तो जमीर मजरूर सिर्फ मुत्तसिल आती है, और उसके साथ कोई हर्फ भी जुड़ सकता है, यानी हर्फ जर, और उसके साथ मुजाफ भी जुड़ सकता है जो, और ये दोनों जर देते हैं उसको। याद रखो जाब्ता ये है कि जो जमीर मुनफसिल हो आप उस पर आतफ करना चाहते हैं तो कोई शर्त नहीं है। किस पर आतफ करना चाहते हैं, जमीर मुनफसिल पर आतफ करना चाहते हैं, चाहे मरफू मुनफसिल हो चाहे मनसूब मुनफसिल हो, आतफ कर सकते हैं। अना व जैदुन अखवानी, अना व जैदुन, देखो मैंने जैद का आतफ किस पर किया, आना पर, कोई शर्त नहीं, आतफ कर सकते हैं। इसी तरह मनसूब मुनफसिल पर भी आतफ कर सकते हैं, कोई शर्त नहीं। जैसे मा जरब तू इल्ला इया का व जैदन, मा जरब तू इल्ला इया का, देखो इया का को मैं इल्ला के बाद लाया तो अब मुत्तसिल लाने की कोई सूरत नहीं थी, तो मुझे अब क्या लाना पड़ी, जमीर मनसूब मुनफसिल लाना पड़ी, और आगे मैं जैद का इस पर आतफ करना चाहता हूं तो आतफ कर सकते हैं, कोई शर्त नहीं। मा जरब तू इल्ला इया, मैंने पिटाई नहीं की इल्ला इया का, मगर आपकी, वजैदन और जैद की, तो यह जैद का आतफ मैंने इया का पर कर दिया, कोई शर्त नहीं। इसी तरह याद रखो मनसूब मुत्तसिल जो है उस पर भी आतफ करने में कोई शर्त नहीं। मैं कहना चाहता हूं मैंने उसकी भी पिटाई की और जैद की भी की, तो जरब तू हूं, अब इस हा जमीर पर मैं जैद का आतफ करना चाहता हूं, और यह हा जमीर मनसूब मुत्तसिल है, और मनसूब मुत्तसिल जमीर पर आतफ करने के लिए कोई शर्त नहीं। मैं कह सकता हूं जरब तू हूं व जैदन, मैंने उस आदमी की भी पिटाई की और जैद की भी पिटाई की, कोई शर्त नहीं। हासिल क्या हुआ अभी तक जो बातें हुई कि जमीर मुनफसिल उस पर आतफ के लिए कोई शर्त नहीं, चाहे मरफू मुनफसिल हो चाहे मनसूब मुनफसिल हो, और मनसूब मुत्तसिल पर भी आतफ करने के लिए कोई शर्त नहीं, आप उस पर आतफ कर सकते हैं बगैर किसी शर्त के। हां अलबत्ता जमीर मरफू मुत्तसिल उस पर आतफ, और इसी तरह जमीर मजरूर मुत्तसिल उसमें थोड़ी तफसील है। तफसील क्या, जमीर मरफू मुत्तसिल जो है यानी जरबतु, इस ता पर मैं आतफ करना चाहता हूं, तो उलमाए नह फरमाते हैं कि जमीर मरफू मुत्तसिल पर आतफ के लिए जरूरी है कि आप उस जमीर की ताकीद लेकर आए, आगे ताकीद लेकर आए मुनफसिल के साथ, किसके साथ, ये तो जरबतु की ता तो मुत्तसिल है, आगे एक इसी मुतकल्लिम की जमीर मुनफसिल ले आओ ताकि इसमें ताकीद पैदा कर दे, फिर आप इस पर आतफ कर सकते हैं। तो जरबतु के अंदर यह ता जमीर कौन सी, मुतकल्लिम की, अब मैं इस पर आतफ करना चाहता हूं तो इसके साथ जमीर मरफू मुनफसिल ले आओ ताकीद के लिए, और मुतकल्लिम की मरफू मुनफसिल कौन सी जमीर है, आना, तो जरबतु आना व जैदुन, जरबतु आना व जैदुन, यह जैदुन पर मैंने रफा क्यों पढ़ा, क्योंकि इसका आतफ है किस पर, आतफ है आना पर या ता पर, इसका आतफ ता पर है, आना सिर्फ उसकी ताकीद है भाई, बात समझ में आ गई, और ता तो फाइल थी मरफू थी, तो जैदुन पर भी मैंने क्या पढ़ा रफा, जरा तो आना व जैदुन, मैंने और जैद ने पिटाई की। तो एक सूरत यह है जब आप जमीर मरफू मुत्तसिल पर आतफ करना चाहते हैं तो उसकी ताकीद ले आए जमीर मरफू मुनफसिल के साथ, और दूसरी सूरत यह है कि दरमियान में फसल ले आए, जराब तू व जैदुन यूं ना कहें, जराब तू व जैदुन, बल्कि दरमियान में कोई ना कोई लफ्ज ले आए भाई, कोई भी लफ्ज ले आए तो फिर आतफ जायज हो जाएगा। मसलन अलयौम का लफ्ज ले आओ, जराब तू अलयौमा व जैदुन, अब भी जैद का आतफ जराब तू की ता पर सही है, तो मालूम हुआ जमीर मरफू मुत्तसिल पर आतफ करने के लिए दो चीजों में से एक चीज होनी चाहिए, क्या, कि या तो उसकी ताकीद लाई जाए जमीर मरफू मुनफसिल के साथ, या दरमियान में फसल ले आए, फसल एक हर्फ का भी हो जाए तो काफी है। मसलन मैं जरबतु की ता पर आतफ करना चाहता हूं, किसका, आगे जैद का, तो कोई सूरत फसल की बना लो, मैं मसलन मफूल ले आता हूं जरबतु हू व जैदुन, जरबतु हू व जैदुन, यह जैद का आतफ किस पर, जरबतु की ता पर, यह जैदुन का रफा बतला रहा है, अगर मैं हा पर आतफ करता, हा तो मफूल है मनसूब है, फिर तो मुझे यूं कहना चाहिए था जरबतु हू व जैदन कहना चाहिए था, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जरबतु हू व जैदुन, यह जैद का आतफ किस पर है, जरबतु की ता पर है, और उस पर आतफ के लिए तो दो शर्तें थी, या तो उसकी ताकीद लाओ मरफू मुनफसिल के साथ, या फसल लाओ, और यहां फसल है, यह हा जमीर बीच में आ गई। तो हासिल कलाम क्या, कि जमीर मरफू मुत्तसिल पर आतफ करने के लिए दो चीजों में से एक चीज होनी चाहिए, क्या, या तो उसकी ताकीद लाए मरफू मुनफसिल के साथ, या दरमियान में फसल ले आए भाई, बल्कि दोनों को साहिब जामी मिला देंगे कि भाई दरमियान में फसल ले आओ, क्या ले आओ, जब आप मरफू मुनफसिल बीच में लाते हैं जराब तू आना व जैदुन, तो भी फसल आ गया या नहीं, और ज़रबतुहु हाज़ा ज़मीर ले आए फिर भी क्या आ गया फसल। तो यूं कहो मुख्तसर लफ्जों में कि बस फसल जरूरी है, चाहे मरफू मुनफसिल के जरिए फसल हो जाए, चाहे किसी और लफ्ज के जरिए फसल हो जाए। जबकि ज़मीर मजरूर जो है वह तो सिर्फ मुतसिल होती है, उस पर आप अतफ करना चाहते हैं, याद रखो उस पर अतफ जायज नहीं, इल्ला ये कि वो चीज जो इसको जर दे रही है उसका इआदा करें। वो जो जार है, जार रुन इसमें फाइल है, जर देने वाला, वो जो जार है यानी वो जो जर देने वाला है उसका आप इआदा कर दें। मसलन लका, ये लका की काफ जमीर पर मैं जैद का अतफ करना चाहता हूं, तो इस काफ जमीर को जर किसने दिया? लाम ने, तो इस लाम को भी मैं दोबारा लाऊंगा। लका वली जैदिन, बगैर लाम के मैं जैद को नहीं ला सकता, यूं मैं नहीं कह सकता लका व जैदिन, बल्कि क्या कहना पड़ेगा, लका व ले जैदिन। और इसी तरह बाज औकात जो जर देता है जमीर मजरूर मुतसिल को वो मुजाफ होता है। किताबू का, इस काफ पर मैं जैद का अतफ करना चाहता हूं, तो जर देने वाली चीज को भी दोबारा लाना पड़ेगा। कैसे कहेंगे, किताबू का व किताबू जैदिन। ज़ाब्ता समझ में आया, हासिले कलाम क्या हुआ फिर दोहरा लें, कीमती ज़ाब्ते हैं ये, आपको हर जगह इबारतों में काम आएंगे कि जमीर अगर मुनफसिल हो, चाहे मरफू मुनफसिल हो चाहे मनसूब मुनफसिल हो, उस पर अतफ बगैर किसी शर्त के जायज है। इसी तरह अगर जमीर मनसूब मुतसिल हो तो उस पर भी अतफ बगैर किसी शर्त के जायज है, ज़रबतुहु व ज़ैदन। और अगर आप अतफ करना चाहते हैं जमीर मरफू मुतसिल पर, तो फिर या तो उसकी ताकीद ले आओ जमीर मरफू मुनफसिल के साथ, या दरमियान में फसल ले आओ, या यूं कहो मुख्तसर लफ्जों में कि बस फसल ले आओ, चाहे मरफू मुनफसिल के जरिए फसल ले आओ, चाहे किसी और लफ्ज के जरिए फसल ले आओ, फिर अतफ जायज है। और जमीर मजरूर मुतसिल पर अतफ तभी जायज होगा जब आप उस जार का इआदा कर दें। अब आइए भाई, ये जो किताब में बयान कर रहे हैं भाई, देखिए बात ये चल रही थी, कफा का वज़ैदन दिरहमुन, ये साहिब जामी ने वज़ैदन को मफ़ऊल माहू करार दिया, लेकिन दीगर नहवी हजरात फरमाते हैं कि ये वज़ैदन जो है ये मफ़ऊल माहू नहीं है, बल्कि ये मातूफ है, बल्कि ये मातूफ है। भाई अपनी कापी पर जरा एक जुमला लिखिए भाई, लिखिए भाई, ज़रबतु ज़ैदन व अमरन, ज़रबतु ज़ैदन व अमरन। देखो तरकीब देखिए इसके अंदर, देखो इसके अंदर ये ज़ैदन मफ़ऊल बिही है, मनसूब है, और आगे अमरन का इसी पर अतफ है और वो भी मनसूब है। तो याद रखो ज़रबतु ज़ैदन व अमरन, तमाम नहवी उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि यहां जो व अमरन आया ये मातूफ है, ये मफ़ऊल माहू नहीं हो सकता, ये मफ़ऊल माहू नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता, कहते हैं वजह यह कि यहां अतफ जाहिर है, माकबल में मातूफुन अलै मनसूब है, और मातूफुन अलै पर जो एराब हो वही मातूफ पर भी आता है, तो इसीलिए अमरन पर भी नसब आ गया। तो जो भी इस जुमले को देखेगा सुनेगा पढ़ेगा वो देखते ही फौरन समझ जाएगा कि यह मातूफ है। और अगर आप इस वाव को बमाने मा के बना लेते हैं और आप क्या कहते हैं ये जो वह अमरन है यह मातूफ नहीं है बल्कि मफ़ऊल माहू है, तो सुनने वाले को तो कभी भी पता नहीं चलेगा ज़रबतु ज़ैदन व अमरन, सुनने वाला फौरन यही समझेगा कि यह मातूफ है। भाई याद रखो जब हम मफ़ऊल माहू किसी चीज को बनाते हैं वहां एराब मुख्तलिफ होता है जिससे सुनने वाला फौरन समझ जाता है कि यह मफ़ऊल माहू है। मसलन मैंने आपसे क्या कहा था, जा ज़ैदुन व अमरुन, जा ज़ैदुन व अमरुन, या अमर का मैं आतफ कर रहा हूं ज़ैद पर, तो जैद मरफू था तो अमर भी मरफू है, लेकिन मैं जा ज़ैदुन व अमरुन कहने के बजाय दूसरे को यह बतलाना चाहता हूं कि दोनों इकट्ठे आए हैं, तो फिर मैं अमरन को मफ़ऊल माहू बनाऊंगा और कैसे कहूंगा जा ज़ैदुन व अमरन, तो यह व अमरन का नसब पढ़ते ही वो चौंक उठेगा कि भाई ये तो मातूफ नहीं हो सकता, क्योंकि मातूफुन आले मरफू है, अगर यह मातूफ होता तो यह भी व अमरुन होता, लेकिन यह तो व अमरुन नहीं है बल्कि क्या है वह अमरन है, तो इसका नसब माकबल से अलग ही हो रहा है, अतफ की सूरत नहीं बन रही, तो इसी से वो समझ जाएगा कि ये मालूम है मफ़ऊल माहू है। तो मफूल माहू में नसब लाया जाता है इस बात की सराहत करने के लिए कि यहां दोनों ने यह फेल इकट्ठे किया है। जा अजैदुन व आमरुन से यह पता नहीं चला कि दोनों इकट्ठे आए हैं, लेकिन जा अजैदुन व आमरन से पता चल रहा है कि दोनों इकट्ठे आए हैं, क्योंकि यह मफूल माहू है, मातूफ नहीं है। तो देखो मफूल माहू में एराब को बाकायदा बदल दिया गया, जा अजैदुन व आमरन, देखो यह आमरन के नसब से पहचान हो गई। लेकिन जब आपने कहा जरबतु जैदन व आमरन, इसके अंदर तो जैदन माकबल में मातूफुन अलैह भी मंसूब है और आगे वह आमरन भी मंसूब है, अब तो किसी को पता नहीं चलेगा कि यह मफूल माहू है, वो तो यही समझेगा कि यह मातूफ है भाई। तो लिहाजा यहां जो जरब तो जैदन व आमरन के अंदर जो व आमरन है यह बिल इतफाक मातूफ है, मफूल माहू नहीं है। और इसी के मिसल है यह जो किताब में आया कफा का व जैदन दिरहमुन, तरकीब सुनो, कफा क्या है, फेल है, और फाइल कौन बनेगा इसका, वो आगे दिरहम आ रहा है, वो दिरहम काफी है, और ये काफ जमीर ये मफूल भी ही है, मंसूब महलन है, और वह हरफे आतफ और जैदन ये भी मंसूब है। तो माकबल में काफ जमीर भी मंसूब और जैदन भी मंसूब, तो देखते ही फौरन जहन में अव्वल क्या ख्याल आता है कि यह मातूफ है। तो यहां अगर आप इसको मफूल माहू बनाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो कफा का व जैदन दिरहमुन ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे जराब तो जैदन व आमरन था, वहां आमरन मफूल माहू नहीं हो सकता, तो यहां भी व जैदन मफूल माहू नहीं हो सकता, क्योंकि यहां आतफ जाहिर है, यहां आतफ जाहिर है। तो उलमा लिखते हैं कि ये कफा का व जैदन दिरहमुन में व जैदन को मफूल माहू करार देना सही नहीं भाई। अगर इसको मफूल माहू करार देते हो तो ज़रबत ज़ैदन व आमरन, उसमें व आमरन को भी क्या करार देना चाहिए, मफ़ऊल माहू करार देना चाहिए। तो ये वजह क्या हुई, कहते हैं शायद साहिबे जामी को वहम हुआ, हस्बुका व ज़ैदन दिरहमुन, ये लिखिए जरा अपने सामने कॉपी पर भाई, लिखिए भाई हस्बुका व ज़ैदन दिरहमुन, हस्बुका व ज़ैदन दिरहमुन। देखो यहां हस्बू ये मुब्तदा है, मुजाफ है, और काफ जमीर मुजाफोन इलैह है, तवज्जो है, और व जैदन ये मफूल माहू है, ये मफूल माहू है, और आगे दिरहमुन जो है वो है खबर, तो व जैदन ये मफूल माहू है, इसको मातूफ नहीं करार दे सकते कि इसका माकबल में जो काफ जमीर है उस पर आतफ हो रहा है, आतफ क्यों नहीं कर सकते, वजह यह कि हस्बू का हस्बू मुजाफ है और काफ जमीर मुजाफोन इले, मालूम हुआ यह काफ जमीर मजरूर मुत्तसिल है, और जमीर मजरूर मुत्तसिल पर आतफ जायज नहीं बगैर इआदा जार के, और आगे दोबारा हस्बू का लफ्ज जैद पर है नहीं, जब दोबारा है नहीं तो आतफ भी नहीं हो सकता, मालूम हुआ जैदन का आतफ हस्बुका की काफ जमीर पर नहीं हो सकता, और नीज अगर आतफ होता भी तो वो तो काफ जमीर मजरूर है, तो जैद को भी क्या होना चाहिए था, मजरूर होता। बात समझ में आ गई, तो लिहाजा यहां हस्बुका व जैदन दिरहमुन, यहां व जैदन मफूल माहू है कतई तौर पर, और माना क्या है, हस्बुका आपके लिए काफी है, व जैदन ऐ मा जैदिन आपके लिए जैद के साथ काफी है, दिरहमुन एक दिरहम, यानी आप दोनों के लिए एक दिरहम काफी है, मुराद यह है आपके लिए जैद के साथ काफी है एक दिरहम, यानी आप दोनों के लिए एक ही दिरहम काफी है। उलमा फरमाते हैं कि यह हस्बुका बमाने है कफा का, यह हस्बुका किस माना में है, हस्बुका व जैदन दिरहमुन क्या माना था, काफी है आप दोनों के लिए एक दिरहम, और कफा का व जैदन इसका भी क्या माना है, आप दोनों के लिए काफी है, तो हस्बुका बमाने कफाका के हैं, और कफाका के अंदर ये काफ जमीर क्या बन रही है, कफा फेल है और काफ जमीर मफूल भी ही है, हस्बुका के अंदर तो काफ जमीर मजरूर है लेकिन कफाका के अंदर काफ जमीर मफूल भी ही है। मालूम हुआ इधर देखिए हस्बुका बमाने कफाका के है, तो हस्बुका के अंदर जमीर ये जो काफ जमीर है मजरूर है लेकिन माना के एतबार से यह मफूल भी ही है, क्योंकि यह कफाका के माना में है, लफ्जों में मफूल भी ही नहीं है, लफ्जों में तो मुजाफिल है, लेकिन माना के एतबार से यह काफ जमीर मफूल भी ही है, क्योंकि ये हसबू का किस माना में है, काफाका के माना में है, और इसके बाद वह जैदन आ रहा है। तो मालूम हुआ कि यह मफूल माहू किसके मुसाहबत के लिए आया, मफूल बिही के मुसाहबत के लिए आया है। मफूल माहू किसके मुसाहबत के लिए आया, मफूल बिही के मुसाहबत के लिए। भाई आपको मैंने बताया था कि मफूल बिही मुसाहबत के लिए आएगा, लेकिन कभी फाइल के मुसाहबत के लिए होगा और कभी मफूल बिही के मुसाहबत के लिए होगा। तो ये जो हसबुका व जैदन दिरहमुन, इसके अंदर ये जो जैदन मफूल माहू आ रहा है, ये किसके मुसाहबत के लिए है, मफूल बिही। और मफूल बिही लफ्जों के एतबार से है या माना के एतबार से है, हसबुका ये काफ जमीर लफ्जों के एतबार से मफूल बिही है या माना के एतबार से है, माना के एतबार से मफूल बिही है, लफ्जों के एतबार से तो ये मुजाफिल है भाई। मालूम हुआ कि मफूल माहू मफूल बिही की मुसाहबत के लिए भी आता है, इसीलिए साहिब जामी ने पीछे एक दो जगह जिक्र भी फरमाया कि मफूल माहू वो फाइल की मुसाहबत के लिए भी आ सकता है और मफूल बिही की मुसाहबत के लिए भी आ सकता है। तो बाज उलमा ने लिखा है कि मफूल माहू सिर्फ फाइल के साथ आ सकता है, किसके साथ, फाइल के साथ आ सकता है, मफूल बिही के साथ नहीं आ सकता। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि हक यह है, हसबुका वज़ैदन दिरहमुन, इसके अंदर यह जो वज़ैदन मफूल माहू है यह फाइल की मुसाहबत के लिए नहीं है, बल्कि यह मफूल बिही की मुसाहबत के लिए है, क्योंकि यह काफ जमीर माना के एतबार से मफूल बिही है। भाई बात समझ में आ गई। तो मालूम हुआ हसबुका का माना उलमा क्या करते हैं, कफा का। तो शायद उससे साहिब जामी को वहम हुआ, और ज्यादा बेहतर है कि यूं कहा जाए कि साहिब जामी यहां हसबुका व जैदन दिरहमुन ही कहना चाहते थे, लेकिन बाज औकात इंसान की तवज्जो नहीं होती, क्योंकि हसबुका व जैदन दिरहमुन इसका क्या माना है, कफा का व जैदन दिरहमुन है इसका माना। तो चुनांचे जहां हसबुका व जैदन दिरहमुन जिक्र होता है, साथ ही उसका माना भी जिक्र किया जाता है, कफा का व जैदन दिरहमुन, तो शायद साहिब जामी को वहां गलती लग गई। तो साहिब जामी हसबुका ही कहना चाहते थे, लेकिन बेख्याली में शायद कफा का लिख गए। बात समझ में आ गई, क्योंकि वो इतने बड़े अल्लामा हैं भाई कि इंसान हैरान होता है कैसी शरा उन्होंने लिखी है भाई, इसकी फसीह और बलीग इबारतें पढ़ता है इंसान हैरान रह जाता है। जहां कहीं मुश्किल पेश आती है, साहिब जामी ऐसी बेहतरीन तावील करके निकल जाते हैं कि बयान नहीं हो सकता। आप अभी तक जितना पढ़ रहे हैं, देखो सारे मकामात काफिया के हल हो रहे हैं, सारी जगह काफिया की हल हो रही हैं। आप और कोई शरा उठाकर लिख लें, वो कभी एक जगह एतराज करते हैं कि यहां बात बन नहीं रही, लिहाजा यूं करना चाहिए, यहां बात बन नहीं रही, यूं करना चाहिए। लेकिन साहिबे जामी कमाल की इबारत लाए हैं कि हर जगह वो मुश्किल को हल करते चले जा रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो ये मालूम हुआ उनसे, जैसे सबकत लिसानी होती है इंसान की जुबान से, कभी एक लफ्ज बोलना हो दूसरा लफ्ज निकल जाता है, इसी तरह शायद यहां वो हसबुका ही कहना चाहते थे, कफा का लिख गए वो भाई, क्योंकि दोनों एक जैसे जुमले हैं। और ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है कि शायद साहिब जामी की राय ही यही हो कि कफा का वज़ैदन दिरहमुन इसके अंदर वज़ैदन मफूल माहू बन सकता है, और नहवी हजरात तो फरमाते हैं कि कफा का वज़ैदन दिरहमुन ये बिल्कुल ज़रबतु ज़ैदन व अमरन की तरह है, ज़रबतु ज़ैदन व अमरन, इसके अंदर व अमरन मफूल माहून नहीं हो सकता, तो कफा का वज़ैदन दिरहमुन इसके अंदर भी वज़ैदन मफूल माहू नहीं हो सकता, क्योंकि माकबल में काफ जमीर मफूल बिही की है, उस पर आतफ हो रहा है, वो भी मनसूब है और आगे ज़ैदन भी मनसूब है। लेकिन शायद साहिब जामी की राय यह हो कि कफाका वज़ैदन दिरहमुन इसके अंदर वज़ैदन मफूल माहू बन सकता है। तो भाई इस फिर इश्काल होता है, ये तो दोनों मिसालें बिल्कुल एक जैसी हैं, ज़रबतु ज़ैदन व अमरन, वहां आप कहते हैं कि वो मफूल माहू नहीं बन सकता, और कफाका वज़ैदन दिरहमुन यहां पर अतफ भी मुमकिन है, फिर भी आप कह रहे हैं कि मातूफ माहू बन सकता है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? तो फिर यह जवाब दिया जा सकता है कि वहां पर ज़रबतु ज़ैदन व अमरन, ज़रबतु ज़ैदन व अमरन, वहां माकबल में जो मातूफ़ुन अलैह था उस पर लफ्जों के अंदर नसब जाहिर था, वहां मातूफ़ुन अलैह कौन, ज़ैद, ज़राबतु ज़ैदन, तो ज़ैद पर लफ्जों में नसब जाहिर है, इसीलिए वह आमरान उसको भी मातूफ ही बनाएंगे। जबकि यहां पर फर्क यह है कि कफा का यहां काफ जो है इस पर नसब लफ्जों में जाहिर नहीं, क्योंकि काफ जमीर तो मबनी है भाई, तो यह महलन मनसूब है, वहां वो जो ज़ैद था वो लफ्जन मनसूब था, लिहाजा आगे मातूफ ही बनाएंगे। और यहां लफ्जन मनसूब नहीं है बल्कि महलन मनसूब है, यानी नसब जाहिर नहीं हो रहा। जब नसब जाहिर नहीं हो रहा तो वह ज़ैदन को मफ़ऊल माहू बनाना यहां जायज है, मातूफ भी बना सकते हैं और मफ़ऊल माहू बनाना भी जायज है। शायद यह राय हो, शायद यह राय हो साहिबे जामी की, भाई बात समझ में आ गई। तो मैंने दोनों इहतेमाल जिक्र कर दिए कि हो सकता है यहां बेख्याली में वो कफा का लिख गए, लिखना हसबू का ही चाहते थे, बेख्याली में कफा का लिख गए, और हो सकता है शायद उनकी राय ये हो कि ये कफा का वज़ैदन दिरहमुन है, इसके अंदर वज़ैदन मफ़ऊल माहू वाक़े हो सकता है, क्योंकि ये उस मिसाल से मुख्तलिफ है। भाई आगे देखिए, भाई कहते हैं वसवा उन कान जालिकल फ़िअलु लफ्ज़न ऐ लफ़्ज़ियन कल मिसालैन अल-मज़कूरैन औ मानन ऐ मानवियन। भाई लफ्ज़न मतन के अंदर आया, लफ्ज़न औ मानन कि वो फेल लफ्जों के एतबार से होगा या माना के एतबार से। याद रखो यहां कई तरकीबें हो सकती हैं। एक सूरत यह है कि लफ्ज़न और मानन को तमीज बना दें, पीछे जो फेल का जिक्र आया, फेल का जिक्र आया लि मामूल फेलिन, किसके लिए? मामूल फेल के लिए, और वो फेल क्या होगा? लफ्जन और मानन, लफ्जों के एतबार से होगा कभी, और कभी माना के एतबार से होगा, लफ्जों में मौजूद नहीं होगा। जैसे उसकी मिसाल भी मैंने जिक्र की थी, आगे मतन में आ रहा है मालका वज़ैदन, मालका वज़ैदन। देखो यहां पर यह वज़ैदन यह मफ़ऊल माहू है, और यहां कोई फेल नहीं, मालका मा इसम है, लाम जारा है और काफ जमीर है, तो फिर लफ्जों में तो नहीं है लेकिन माना के एतबार से यहां है, क्योंकि मा लका व जैदन किस माना में है? मा तस्नाउ व जैदन, आप जैद की माइयत में क्या कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो ये लफ्जन और मानन ये तमीज भी हो सकती है उस फेल से, और नीज ये हाल भी हो सकता है फेल से, कि वो फेल इस हाल में कि वो लफ्जन होगा या मानन होगा, और नीस इसको काना की खबर भी बना सकते हैं, और साहिबे जामी ने इसको काना की खबर बनाया। मा कबल में काना को भी महजूफ निकाल लिया और काना के इसम को भी महजूफ निकाल लिया, तो इबारत क्या बनाई? वसवा उन काना जालिकल फ़िअलु लफ्जन, और बराबर है कि वो फेल लफ्जों के एतबार से हो, औ मानन या माना के एतबार से हो। अब देखो काना का इसम क्या? जालिकल फ़िअलु, वो फेल, और लफ्जन ये लफ्ज ये तो मस्तर है, तो काना का इसम है जात, और जो मस्तर है वो है सिफत। मैंने बताया मस्तर का अपना कोई खारिज में वजूद ही नहीं, और मस्तर का हमल जात पर सही नहीं, जैसे जैदुन अदलुन, देखो ये अदल का हमल जैद पर सही नहीं। तो फिर इस सूरत में एक तावील ये की जाती है कि मस्तर को इसमें फाइल या इसमें मफूल के माना में ले लेते हैं, तो यहां पर भी ये लफ्जन बमाने मलफूजन के ले लें। सवा उनका नजालिकल फेल मलफूजन, बराबर है कि वो फेल मलफूज हो, आओ मानवीयन या वो फेल मानवी हो भाई। या दूसरी तावील यह है जो साहिब जामी ने की, लफ्जन आई लफ्जीयन, बतलाना ये चाहते हैं कि ये लफ्जन असल में लफ्जीयन था, यानी इसके आखिर में या मौजूद थी, यानी ये इसमें मनसूब था, इसमें मनसूब जिसमें किसी चीज की तरफ निस्बत की जाती है, जैसे लाहौर से लाहौरीयन, लाहौर वाला, लाहौर की तरफ मनसूब। तो यहां पर भी लफ्ज के ये असल में लफ्जीयन था, इसमें मनसूब था, और याद रखो इसमें मनसूब के आखिर से याए मुशद्दद को कभी हजफ कर लेते हैं कियासी तौर पर, ये कियासी तौर पर आम कलाम अरब में इस तरह इस्तेमाल होता है। तो ये लफ्जन भी असल में क्या था? लफ्जीयन, और मानन भी असल में क्या था? मानवीयन था भाई। तो कहते हैं सवा उनका नदालिकल फ़िअलु लफ्जन ऐ लफ्जीयन, बराबर है कि वो फेल लफ्जी हो, कल मिसालैन अल-मज़कूरैन, जैसे कि इन दो मज़कूरा मिसालों में है, औ मानन ऐ मानवीयन, या वो फेल क्या हो? मानवी हो। नहु मा लका व ज़ैदन, देखो मा लका व ज़ैदन, इसके अंदर लफ्जों के अंदर कोई फेल जिक्र नहीं है, तो मा लका व ज़ैदन ऐ मा तस्नाउ, यानी मा तस्नाउ व ज़ैदन, आप ज़ैद की माइयत में क्या कर रहे हैं। आगे देखिए कहते हैं वल मुरादु बि मुसाहबतिही लिमामूलिल फ़िअल मुशारकतुहू लहू फी ज़ालिकल फ़िअल फी ज़मानिन वाहिद, भाई ये अब एक एतराज का जवाब दे रहे हैं भाई। एतराज ये होता है, आपने हमें क्या कहा, मफूल माहू वो होता है जो वाओ के बाद जिक्र होता है, और किस लिए आता है, मामूले फेल की मुसाहबत के लिए कि ये उसके साथ है भाई। कहते हैं कि ये तारीफ तो उस लफ्ज पर भी सादिक आती है जो वाव आतफ के बाद आए, जा अनी जैदुन व आमरुन, जा अनी जैदुन व आमरुन, ये आमरुन को मैंने मफूल माहू नहीं बनाया, ये मातूफ है भाई। तो जा अनी जैदुन व आमरुन, आया मेरे पास जैद और आमर। देखो ये अमर जो है, ये जो मातूफ है जो वावे आतिफा के बाद जिक्र है, ये मातूफ भी मामूले फेल यानी जैद का मुसाहिब है इस आने में। जा अजैदोन व अमरुन, क्या माना, दोनों आए हैं, जैद भी आया है और अमर भी आया है, अगरचे इकट्ठे आना यहां नहीं, इकट्ठे आना नहीं, लेकिन दोनों में बाई लिहाज मुसाहबत है कि आने का फेल जैद ने भी किया है और आने का फेल अमर ने भी किया है, तो इस फेल के करने के एतबार से ये दोनों मुसाहिब हैं भाई, ये एक दूसरे के साथी हैं भाई, इसने भी ये फेल किया, दूसरे ने भी वही फेल किया, चाहे इकट्ठे किया चाहे अलग किया, उसमें तो कोई हरज नहीं। तो आपको बतलाएंगे कि नहीं भाई, ये वावे आतिफा के बाद जो मजकूर होता है इसको लेकर आप एतराज नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि मतन के अंदर जो मुसाहबत का लफ्ज आया, उस मुसाहबत से सिर्फ मुशारकत फिल फेल मुराद नहीं है, बल्कि मुशारकत फिल फेल के साथ साथ मुशारकत फिल जमान और मुशारकत फिल मकान भी मुराद है, कि दोनों फेल के करने में भी शरीक हों और जमाना और मकान भी एक ही हो। और जा अनी जैदुन व अमरुन, जब आपने अमरुन को मातूफ बनाया तो इसके अंदर मुशारकत फिल फेल तो है, मालूम अमर ने भी ये वाला फेल किया है, तो मुशारकत फिल फेल तो है, लेकिन मुशारकत फिल जमान और मकान यहां से मालूम नहीं हो रही कि दोनों ने इकट्ठा ये फेल किया है। तो मुसाहबत का क्या माना, कि मुशारकत फिल फेल के साथ साथ क्या हो, मुशारकत फिल जमान भी हो और मुशारकत फिल मकान भी हो, और अतफ के अंदर यह माना मालूम नहीं होता, लिहाजा वो जो वाव अतफ के बाद मजकूर होता है उसको लेकर आप एतराज नहीं कर सकते भाई। तो कहते हैं वल मुरादु बि मुसाहबतिहि लिमामूल फिअल, और मफूल माहू की मुसाहबत मामूल फेल के लिए, इससे मुराद जो है मुशारकतुहु लहू फी जालिकल फिअल, वो मफूल माहू की मुशारकत है मामूल फेल के साथ उस फेल के अंदर, फी जमानिन वाहिदिन, एक ही जमाने में, नहु सिरतु व जैदन, सिरतु व जैदन, जी मुझे बताइए, सिरतु व जैदुन, यूं पढ़ सकते हैं, मैं जैद का आतफ करना चाहता हूं सिरतु की ताजमीर पर, कर सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यह ताजमीर मरफू मुत्तसिल है और इस पर आतफ के लिए क्या जरूरी है, या तो इसकी ताकीद लाई जाए या फसल किया जाए, दोनों नहीं, तो लिहाजा यहां व जैदुन नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे, व जैदन। यही एक और बात भी याद रखना भाई, ये साहिबे काफिया का मजहब है, ये साहिबे काफिया का मजहब है कि जमीर मरफू मुत्तसिल, तवज्जो है, जमीर मरफू मुत्तसिल पर आतफ जायज नहीं जब तक उसकी ताकीद ना लाई जाए या फसल ना किया जाए, ये साहिबे काफिया का मजहब है, जबकि जमहूर नहवी उलमा फरमाते हैं कि आतफ जायज है इस सूरत में भी, अलबत्ता वो कबीह है, नापसंदीदा है, पसंदीदा यह है कि फसल लाया जाए या ताकीद लाई जाए, लेकिन अगर बगैर फसल या बगैर ताकीद के भी आप आतफ कर दें तो यह भी जायज है, अलबत्ता कबीह है और नापसंदीदा है। तो सिरतु व जैदन, ये जैदन यहां पर मफूल माहू है भाई, सिरतु व जैदन ऐ सिरतु मा जैदिन, मैं जैद के साथ चला, तो देखो यहां दोनों के चलने का जमाना एक ही है, और मकान वाहिदिन या मुशारकत फिल फेल के साथ साथ मुशारकत फी मकान वाहिदिन, एक जगह में भी हो, जैसे लौतुरिकति नाकतु व फसीलतहा लरजअतहा व फसीलतहा, इसको मंसूब पढ़ना है, ये मफूल माहू है भाई, लौतुरिकति नाकतु, नाका कहते हैं ऊंटनी को, फसीला फसीलुन और फसीलतुन, ये गाय और ऊंटनी का वो बच्चा जिसका दूध छुड़ा दिया गया हो, यानी थोड़ा सा बड़ा हो गया है उसका दूध छुड़ा दिया गया है, इसको फसील कहते हैं, ये फसल से है, फा स्वाद लाम, फसल, फसल का माना भी क्या है, जुदाई, तो यहां भी जुदाई कर दी गई उसके दूध पीने से। तो कहते हैं लव तुरिकति नाकतु, अगर छोड़ दिया जाता ऊंटनी को, वह फसीलता ऐ मा फसीलता साथ उसके बच्चे के, ला रजाअत हा तो अलबत्ता वो उस ऊंटनी का दूध पी लेता। अगर उस ऊंटनी को उसके बच्चे के साथ छोड़ दिया जाता तो वो उसका दूध पी लेता, यानी एक जगह के अंदर, एक जगह में दोनों को छोड़ दिया जाता तो वो बच्चा उसका दूध पी लेता। मालूम हुआ मुसाहबत से क्या मुराद है, मुशारकत फिल फेल भी हो और साथ साथ जमाना या मकान भी एक होना चाहिए। फला यंतकिजु, लिहाजा ये तारीफ टूटती नहीं है, यानी इस पर एतराज नहीं हो सकता। बिल मजकूरी बादल वाविल आतिफती, उस इसम के जरिए जो मजकूर हो वावे आतिफा के बाद। नहु जा अनी जैदुन व अमरुन, ये जो व अमरुन है ये मुशारकत फिल फेल तो इसका फायदा तो यहां हो रहा है, लेकिन यहां मुसाहबत यानी जमाना या मकान एक नहीं है भाई। तो कहते हैं फला यंतकिजु बिल मजकूरी बाद अलवा विल आतिफति, लिहाजा ये तारीफ टूटती नहीं, यानी उस पर एतराज नहीं किया जा सकता वो जो वावे आतिफा के बाद मजकूर हो उसके जरिए। नहुजा अनी जैदुन व अमरुन फइन्नहा ला तदुल्लु इल्ला अलल मुशारकति फी असलिल फिअली दून अल मुसाहबति, इसलिए क्योंकि ये दलालत नहीं करता इल्ला अलल मुशारकति फी असलिल फिअली, मगर सिर्फ असले फेल में मुशारकत पर। यह आतफ जो है, ये जो वावे आतिफा के बाद मजकूर है, यह सिर्फ किस पर दलालत करता है, मुशारकत फी असले फेल यानी फेल के अंदर यानी मजीअत के अंदर दोनों में मुशारकत है। दून अल मुसाहबती, मुसाहबत नहीं है यानी जमाना या मकान एक नहीं है भाई। यहां पर साहिब जामी ने बतलाया कि मुसाहबत का माना यह है कि जमाना एक हो या मकान एक हो, जमाना एक हो या मकान एक हो। तो बाज मुहशी हजरात एतराज करते हैं कि साहिब जामी सिर्फ जमाना कह देते मुख्तसरन, वजह यह कि इनमें जमाने के साथ मकान भी एक होना चाहिए। इन्होंने क्या मिसाल की, या तो जमाना एक होगा जैसे सिरतु व जैदन, मैं जैद के साथ चला यानी एक जमाने में, तो इसमें मकान भी एक होगा, दोनों इकट्ठे चले होंगे एक ही जगह पर चले होंगे। अगर एक जगह न चले हो तो फिर यूं नहीं कहते, मसलन एक शख्स चला है लाहौर के अंदर और उसी वक्त के अंदर एक शख्स कराची में चला है, तो यूं नहीं कहते सिर तो मा हो मैं उसके साथ चला, बल्कि जमाने के साथ साथ जगह भी एक होनी चाहिए। और इसी तरह लव तुरिकति नाकतु व फसीलता लरजाअतहा, यहां जगह एक है लेकिन जगह के साथ जमाना भी एक होना यहां जरूरी है, वरना अगर जगह एक ही हो लेकिन जमाना अलग हो, मसलन ऊंटनी को उस जगह में आज छोड़ा गया और बच्चे को कल छोड़ा गया, तो देखो जगह वही है लेकिन जमाना अलग है, अभी वो दूध नहीं पी सकता। तो मालूम हुआ यहां जगह एक होने के साथ जमाना भी एक होगा तभी दूध पी सकेगा। तो जहां जमाना जिक्र किया साहिबे जामी ने, वहां मकान भी एक होगा तभी कहेंगे सिर तो माहू, और जहां मकान जिक्र किया साहिब जामी ने, वहां भी जमाने का एक होना जरूरी है। तो लिहाजा साहिब जामी को दोनों को अलग नहीं जिक्र करना चाहिए था, क्योंकि जमाना और मकान दोनों का एक मुत्तहिद होना जरूरी है। तो सिर्फ वो जमाना जिक्र कर देते तो बस दोनों चीजें खुद ही उसमें आ जाती। तो फिर बाज दीगर मुहशी हजरात जवाब देते हैं कि भाई साहिब जामी ने जो दो मिसालें जिक्र की जमाने और मकान की, वो ये बतलाने के लिए नहीं है कि दोनों में तकाबुल है, जहां जमान एक होगा वहां मकान एक नहीं, जहां मकान एक होगा वहां जमान एक नहीं, ऐसा नहीं। वो इसलिए दो मिसालें उन्होंने जिक्र नहीं की, बल्कि यहां वो मकसूद बतलाना चाहते हैं। कभी कभार मफूल माहू को जब लाया जाता है तो वहां कभी जमाना एक बतलाना मकसूद होता है, कभी मकान एक बतलाना मकसूद होता है। मसलन आप किसी को बतलाते हैं सिर तू व जैदन, मैं जैद के साथ चला, तो यह अमूमन कब कहा जाता है, यह उस मौका पर बोलते हैं जहां एक जगह बतलाना मकसद नहीं होता बल्कि एक जमाना बतलाना मकसद होता है। उस वक्त आप दूसरे को क्या कहते हैं, सिर तू व जैदन, मैं जैद के साथ चला, यानी आप जमाना बतलाना चाहते हैं कि हम इकट्ठे चले एक जगह पर चले, यह बतलाना मकसद नहीं होता, अगरचे जगह भी एक ही होती है। और इसी तरह बाज औकात मकान बतलाना मकसूद होता है मफूल माहू के जरिए, जैसे लव तुरिकति नाकतु व फसीलतहा लरजाअतहा, यहां ये जो कहा गया कि अगर ऊंटनी को छोड़ दिया जाता उसके बच्चे के साथ तो उसका दूध पी लेता, तो यहां मकसद क्या है, यानी एक जगह अगर छोड़ दिया जाता, अगरचे जमाना भी एक है लेकिन वहां बतलाना क्या मकसद होता है, मकान का बतलाना मकसद होता है। तो ये जो जमान और मकान दो किस्में बनाई साहिबे जामी ने, ये मकसूद के एतबार से कि कभी जमाना बताना मकसूद होता है कि जमाना एक है दोनों का, और कभी मकान बतलाना मकसूद होता है कि मकान एक है, अगरचे दोनों मुस्तलजिम है, जहां जमाना एक होगा वहां मकान भी एक होगा और जहां मकान एक होगा वहां जमाना भी एक होगा, लेकिन यहां दो किस्में सिर्फ मकसूद के एतबार से बनाई भाई, ये बतलाने के लिए नहीं कि ये दोनों एक दूसरे के मुकाबिल हैं। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, कहते हैं वालम अन्न मजहब जमहूर नुहाती अन्न العامل في المفعول معه الفعل او معناه। यहां से आमिल बयान कर रहे हैं कि मफूल माहू में आमिल क्या होता है, जैसे अभी मिसाल आई सिर तो व जैदन, ये जैदन में आमिल कौन है, तो आपको बतलाएंगे कि मफूल माहू के अंदर आमिल जो है वो फेल या माना फेल होता है, जहां फेल खुद लफ्जों में होगा तो फेल आमिल बनेगा, जहां फेल लफ्जों में नहीं है बल्कि माना के एतबार से फेल है वहां माना फेल उसके अंदर आमिल बनेगा। सिर तो व जैदन, यहां सिर तो फेल मौजूद है, ये जैदन में आमिल है, इसको नसब दे रहा है। मा लका व जैदन, यहां लफ्जों में फेल मौजूद नहीं तो यहां माना फेल यानी माना के एतबार से तस्नाउ फेल मौजूद है, वो इसको क्या कर रहा है, नसब दे रहा है। तवज्जो है। और देखिए ये मफूल माहू किसके बाद आता है, वाव के बाद, और ये वाव किस माना में होता है, मा के माना में, तो फेल मफूल माहू में अमल करता है बवास्ते वाव के, यानी बीच में कौन आता है, वाव, तो फेल या माना फेल वो मफूल माहू में अमल करता है बवास्ते वाव के, और वो वाव किस माना में होता है, मा के माना में होता है। देखिए भाई कहते हैं वालम तू जान ले अन्न मजहब जमहूर नुहाती के जमहूर नहवियों का मजहब यह है कि अन्नल आमिल फिल मफूल माहूल फेल औ मानाहू कि वो जो आमिल होता है मफूल माहू में वो फेल या माना फेल होता है भी तवस्सुतिल वाविल्लती भी माना मा उस वाव के वास्ते से जो मा के माना में होता है उस वो फेल या माना फेल आमिल होता है इस वाव के वास्ते से उस वाव के वास्ते से जो बमाना है मा के होता है। वह इन नमा वजाउल वाव मौजा मा ये मफूल माहू जो है वो वाव के बाद आता है और ये वाव किस माना में है मा के माना में तो भाई मा को क्यों नहीं लाए ये वाव को क्यों अरब इस्तेमाल करते हैं मा की जगह कहते हैं भाई इसलिए क्योंकि वाव मुख्तसर है वाव एक हर्फ है और मा में दो हर्फ हैं तो वाव मुख्तसर है इसलिए वाव को लेकर आते हैं तो कहते हैं वह इन नमा वजाउल वाव मौजिया मा और अरबों ने वाव को रखा मा के मकाम में लिकाउ निहा अक्सरा इसलिए क्योंकि वाव जो है ज्यादा मुख्तसर है मा के मुकाबले में। वह असलूहा अब बतला रहे हैं कि जो वाव बमाने मा के है इसकी असल वाव आतफ है ये असल में क्या था वाव आतफ भाई तो वही वाव आतफ है उसको कभी मा के माना में इस्तेमाल कर लिया जाता है इसलिए क्योंकि वो जो वाव आतफ होता है वो जमा का फायदा देता है और इसको इस्तेमाल कर लिया मा के माना में और जमा ये मुनासिब है मा के जमा मुनासिब है मा के किस तरह देखो जा जैदुन व अमरुन मैं आतफ कर रहा हूं जा जैदुन व अमरुन मैंने अमरुन का आतफ किया किस पर जैद पर इस वाव ने जमा का फायदा दिया किस चीज के जमा यानी यह बतलाया कि जिस चीज की निस्बत जैद की तरफ है यह मातूफ भी उसके साथ इस बात में जमा है यानी इसकी तरफ भी वही निस्बत है यानी जैद और अमर दोनों आए हैं जैद और अमर तो यह फायदा किसने दिया भाई देखो ना जा जैदुन फाइल तो जैदुन है वह अमरुन यह तो आगे मातूफ है लेकिन स्वाव ने क्या फायदा दिया कि यह अमर भी जैद के साथ जमा है किस चीज में उस निस्बत में जो जैद की तरफ की जा रही है जो निस्बत जैद की तरफ है वही निस्बत अमर की तरफ भी है यह जमा का फायदा किसने दिया वाव ने दिया कि ये दोनों इस निस्बत में जमा है इकट्ठे हैं और मफूल माहू में भी क्या बतलाया जाता है कि मफूल माहू उसकी माइयत है मामूले फेल के साथ तो जमा का माना मुनासिब है किसके माइयत के जमा के अंदर भी चीजें इकट्ठी होती हैं जमा होती हैं और माइयत में भी चीजें जमा होती हैं बात समझ में आ गई तो इसलिए वाव को इस्तेमाल किया किसी और हर्फ को फा वगैरह को इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वाव जमा का फायदा देता है और जमा मुनासिब है माइयत के जबकि फा वगैरह तो तरतीब का फायदा देते हैं और माइयत में तो कोई तरतीब वगैरह नहीं होती। तो कहते हैं वह असलुहा वावुल आतफी, और इस वाव की जो असल है वो वावे आतफ है, अल्लतीफीहा मानल जमई, वो वावे आतफ जिसके अंदर जमा वाला माना होता है, फनासब मानल मईयती, तो ये वावे आतफ मईयत के माना के मुनासिब हुआ, ये वावे आतफ मईयत के माना के मुनासिब हुआ, लिहाजा इसी को इस्तेमाल कर लिया गया, किसी और हर्फ को इस्तेमाल नहीं किया गया। भाई बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।